कुंज बिहारी जय गोपी जन बल्लभ गिरिवर धारी यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीर बनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन बल्लभ गिरिवर धारी यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीर बनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन बल्लभ गिरिवर धारी यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीर बनचारी जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय श्रील प्रभुपाद नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल गौर प्रेम नंदे हरि हरि बोल जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमती डिवाइन ग्रेस ए सी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर जी महाराज श्रील प्रभुपाद की जय प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद की जय हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय हरे कृष्ण। तो कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि किस तरह से जीवात्मा जो है सुख प्राप्त करने के लिए अपने जीवन में क्या क्या नहीं करता है। और कल आप लोगों को एक छोटा सा वीडियो क्लिप जो दिखाया था उसमें हमने देखा कि किस तरह से मृत्यु से जन्म से लेकर के मृत्यु तक आदमी के पास में अपॉर्चुनिटीज़ रहती है, मौका रहता है कि वो अपने जीवन में सुख प्राप्त करने के लिए किस चीज़ का अवलंबन कर सकता है। चॉइस हमारे पास में रहता है, हम या तो जन्म से लेकर के मृत्यु तक धर्म की गाड़ी में बैठ सकते हैं या जन्म से लेकर के मृत्यु तक अधर्म की गाड़ी में बैठ सकते हैं, चॉइस हमारा है। पर जब हम जिस गाड़ी में बैठ जाएंगे तो उसके जो जो स्टेशन्स आएंगे और जिस डेस्टिनेशन पे हमको लेकर के जाएंगे वो हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। सो चॉइस करते समय ही हमारा कंट्रोल रहता है। और वास्तविक सुख कहाँ है उसको समझ करके अगर हम लोग वास्तविक सुख की खोज करेंगे तो हम समझ पाएंगे। यहाँ पे इस स्लाइड में आप देख रहे हैं, इसमें बताया गया है कि इस जगत में जीवों की 84 लाख योनियाँ हैं। आपने भी सुना होगा, भारत में प्रत्येक व्यक्ति ऑलमोस्ट इस बात को जानता है, शायद इतना डिटेल में नहीं जानता होगा कि क्या क्लासिफिकेशन है, तो यहाँ पे उसका क्लासिफिकेशन भी दे दिया गया है। जलजा नवलक्षाणि स्थावर लक्ष विंशति क्रिमयो रुद्र संख्या का पक्षिणाम 10 लक्षणम त्रिंश लक्षाणि पाशव चतुर्लक्षाणि मानुष। तो इसमें अगर देखें तो टोटल जल के स्थावर, कीड़े मकोड़े, पक्षी, पशु इत्यादि को मिलाकर के टोटल 80 लाख होते हैं और मनुष्यों की योनियां केवल 4 लाख हैं। लेकिन मनुष्य योनि में ही ये संभव है कि जीव जो है अपना उद्धार कर सकता है, अन्यथा उसको अपना उद्धार कर पाना बड़ा कठिन हो जाता है। जैसे यहाँ भगवान भगवद गीता में 5वें अध्याय में बताते हैं, 15वें श्लोक में कि नादत्ते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतम विभो अज्ञानेनावृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः। यहाँ भगवान कह रहे हैं कि परमेश्वर न तो किसी के पापों को ग्रहण करता है न तो पुण्यों को ग्रहण करता है, किंतु सारे देहधारी जीव उस अज्ञान के कारण मोहग्रस्त रहते हैं जो उनके वास्तविक ज्ञान को आच्छादित किए रहता है। तो इस श्लोक में जंतवह कह करके भगवान ने समस्त जीवों को संबोधित किया है, जितने ही जीव हैं। पर इसी चैप्टर में भगवान कहते हैं, शक्नोति है व यह सोढ़ुम प्राक शरीर विमोक्षणा काम क्रोधोद्भवम वेगम स युक्त स सुखी न रह। 23वां श्लोक है ये 5वें अध्याय का। इसमें बताते हैं कि यदि इस शरीर को त्यागने के पूर्व कोई मनुष्य इंद्रियों के वेगों को सहन करने तथा इच्छा या क्रोध के वेग को रोकने में समर्थ होता है तो वह इस संसार में सुखी रह सकता है, उसको अक्षय सुख प्राप्त होता है। ये कहते हैं भगवान इसके 21वें श्लोक में, बाह्य स्पर्शे स्वाशक्तात्मा विन्दति आत्मनि यत् सुखम स ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखम अक्षयम अश्नुते। ऐसा मुक्त पुरुष भौतिक इंद्रिय सुख की ओर आकृष्ट नहीं होता अपितु सदैव समाधि में रहकर अपने अंतर में आनंद का अनुभव करता है। इस प्रकार स्वरूप सिद्ध व्यक्ति पर ब्रह्म में एकाग्रचित्त होने के कारण असीम सुख पाता है। तो ये सुख जो है केवल मनुष्य योनि में उपलब्ध है, बाकी अन्य योनियों में जीव जो है अनेक प्रकार के प्रयास करता है सुख पाने का, लेकिन उसको सुख मिलता है क्या, ये बड़ा कठिन विषय है जानने के लिए। मैं आपको इसमें ये BBC का एक प्लैनेट अर्थ करके एक सीरियल था, उस पर इस प्लैनेट अर्थ पे कहाँ कहाँ कैसे कैसे कितने प्रकार के प्राणी हैं, 84 लाख योनियों में जितने प्राणी हैं सभी प्राणियों के बारे में बताते हैं। लेकिन मनुष्य को छोड़ करके ऐसा कोई भी प्राणी आप नहीं पाएंगे जो भगवान की भक्ति या पूजा अर्चना कुछ करना चाहिए इसमें लगा होता है। तो मनुष्य के शरीर को प्राप्त करने के बाद ही ये पॉसिबल है कि जीव जो है भगवान की भक्ति के प्रति या धर्म के प्रति आकृष्ट हो सकता है। यहाँ इस वीडियो में दिखा रहे हैं,
right time, but time, what the man is left. Pretty well, but it's been magnificent enough. Oh dear, and it's a certain thing. The picture of the heroes have just made me to look at these remarkable mysteries. Those extravagant heroes will likely be immense.
दिस साउंड इज गॉन. चाहे किसी भी योनि में क्यों ना हो, हमेशा सुख ढूंढता है. वो पक्षी क्या ढूंढ रहा था, वो भी सुख ढूंढ रहा है. लेकिन कौन सा सुख ढूंढते हैं ये लोग? ये भौतिक इंद्रिय सुख ढूंढते हैं. उनको लगता है कि भौतिक इंद्रियों को सुखी करने में ही जीवन में सुख है. पर भगवद्गीता में भगवान कहते हैं, एही संस्पर्शजा भोगा दुख योनः. अगर इंद्रिय और इंद्रिय विषय आपस में एक दूसरे से संपर्क में आते हैं तो केवल दुख की उत्पत्ति होती है, दूसरा कुछ नहीं प्रकट होता है. सो मनुष्य के जीवन में ही एक ऐसा दुर्लभ अपॉर्चुनिटी है जिसमें हम अक्षय सुख को प्राप्त कर सकते हैं. पर वो अक्षय सुख वास्तव में है क्या, उसको जानना आवश्यक है. अन्यथा हम एक योनि से लेकर के दूसरे योनि तक ऐसे 84 लाख योनियां भ्रमण करेंगे और हमेशा सुख प्राप्त करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अंत में फ्रस्ट्रेटेड ही रहेंगे. चाहे कोई भी प्राणी के शरीर में चले जाएं, वहाँ अंततः हमको फ्रस्ट्रेटेड ही रहना पड़ेगा. सो इसीलिए वी हैव टू बी वेरी केयरफुल. इसलिए असली प्रॉब्लम क्या है, हमको पहले प्रॉब्लम को डिफाइन करना है. अगर सांसारिक व्यक्ति से पूछा जाए कि उसकी समस्या क्या है, तो मैक्सिमम लोग यही बताएंगे, रोटी कपड़ा और मकान. अगर ये चार चीज़ें रोटी कपड़ा मकान सॉल्व हो गया तो जगत में सब कुछ सॉल्व हो जाता है. लेकिन रोटी कपड़ा मकान मिलने वालों को, जिनके पास वो है, क्या उनकी भी समस्या नष्ट हो चुकी है? नहीं हो गई है. इसीलिए समस्याएं क्या हैं, प्रॉब्लम्स क्या हैं इस जगत में, उसको जानना आवश्यक है. और वो समस्याएं हैं जो सबके लिए सामान्य हैं. सामान्य मतलब चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, छोटा हो, बड़ा हो, ऊंचा हो, नीचा हो, हर एक के लिए वो कॉमन है. और कोई भी व्यक्ति वो चाहता नहीं है और उससे बच भी नहीं सकता है. तो ऐसे कौन से समस्याएं हैं जो सबके लिए कॉमन है, कोई नहीं चाहता है लेकिन बच भी नहीं सकता है? विचार करने पे हम पाएंगे शास्त्रों के आधार पे, ये है जन्म. जन्म लेना एक समस्या है. जन्म लेना एक समस्या क्यों है बताइए? जन्म मिलना आसान होता है. जन्म जो लेता है शिशु, वो जन्म लेना आसान होता है? नहीं. एक ऐसे गर्भ में उसको 9 महीने तक पैक रहना पड़ता है. एक बार मैं रेलवे स्टेशन से आ रहा था तो मैं देखा कि एक सुलभ शौचालय था, उसमें एक टॉयलेट में एक लड़का बैठा हुआ है एक टेबल डाल करके, और जो भी टॉयलेट के अंदर आता है उससे 2 रुपया 1 रुपया जो कुछ सिक्का देता है वो लेता है, और दिन भर उसी टॉयलेट में बैठा वो कलेक्शन करता रहता है. तो कोई व्यक्ति अगर क्लीनलीनेस को अगर अप्रिशिएट कर सकता है, तो टॉयलेट से गुजरने के बाद अगर टॉयलेट ठीक से साफ नहीं है तो आदमी नाक दबा लेता है. पर वो व्यक्ति दिन भर उसी में बैठा रहता है. किसके लिए? 1 रुपया 2 रुपया लोगों से मिलेगा. फिर उसमें आते हैं लोग, अपने मल मूत्र को विसर्जन करते हैं तो उसकी दुर्गंध भी चारों तरफ फैल जाती है. दुर्गंध जब चारों तरफ फैल जाती है तो उसको स्मेल करना पड़ता है उसको. तो मैं ये सोच रहा था कि ये तो अभी कंडीशनड हो गया है, इसमें बैठा हुआ है, लेकिन जब हम माँ के गर्भ में रहते हैं तो हमारी सबकी स्थिति तो वैसे ही है, हम टॉयलेट पे ही तो रहते हैं। कहाँ रहते हैं? हम टॉयलेट में ही रहते हैं, और फिर उस टॉयलेट में एक दिन दो दिन नहीं, कितने दिनों तक रहना पड़ता है। ऐसे सिचुएशन में रहते हैं कि हम उस टॉयलेट से बाहर भी नहीं निकल सकते हैं। और अंत में एक दिन ऐसा आता है जब अपान वायु प्रेशर करके और वहाँ से हमको निकालने के लिए तत्पर हो जाती है, पर निकलने का जो मार्ग है वो बहुत छोटा होने के कारण उसको बहुत पुश देना पड़ता है, लेबर पेन बोलते हैं जिसको। और जब वो लेबर पेन होता है तो वो केवल माँ को ही नहीं होता है, माँ को जितना होता है उतना उस शिशु को भी होता है, बच्चे को भी होता है। और इसी के कारण आप किसी भी डॉक्टर को पूछिए, जो भी बच्चा जन्म लेता है वो रोते हुए बाहर आता है, कोई भी बच्चा जो है हंसता हुआ बाहर नहीं आता है, बहुत बिरले, भगवान जो है वो साक्षात प्रकट होते हैं, पर बाकी जो भी शिशु जन्म लेता है वो रोता हुआ ही बाहर आता है। क्यों? क्योंकि उसको हैवी प्रेशर सहना पड़ता है, माँ जो है उसको बहुत कष्ट सहना पड़ता है उसको पैदा करने के लिए, तो जच्चा बच्चा दोनों को ही बहुत भयानक कष्ट है। जन्म एक कष्ट है, जन्म के बाद में मृत्यु वो दूसरा कष्ट है। आपने सुना होगा कि मृत्यु के समय व्यक्ति एक्सप्रेस भी नहीं कर सकता है कि उसको कितना कष्ट होता है, कभी कभी लोग कोमा में चले जाते हैं। और कहते हैं शास्त्र में कि मृत्यु के समय ऐसा लगता है, इतना कष्ट होता है जैसे एक साथ 44,000 बिच्छू डंक मारते हों। आप में से किसी को एक बिच्छू डंक मारने का अनुभव है? कैसा होता है? अगर जिस किसी को अनुभव होगा तो आपको मालूम होगा कि एक बिच्छू अगर डंक मारता है तो कितनी जलन होती, कितनी पीड़ा होती है। 40,000 स्कॉर्पियन एक साथ डंक मार रहे हैं तो कैसा लगेगा? तो मृत्यु के समय उतनी पीड़ा होती है, भयानक। और ये दोनों एंड के बीच में जरा और व्याधि है, तो कोई भी व्यक्ति इस स्थिति में जन्म लेना नहीं चाहता है, कोई भी व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त करना नहीं चाहता है, और कोई भी व्यक्ति जो है बीमारी नहीं चाहता है। कोई चाहता है बीमारी? नहीं चाहता है। कोई बुढ़ापा नहीं चाहता है। लेकिन कोई भी एक ऐसा व्यक्ति बताइए मुझे जो जिसको जीवन भर कभी बीमारी नहीं हुआ है, हुआ ऐसा है कोई जीवन भर कभी नहीं बीमारी हुआ है? गर्भ से ही बीमारी का सिलसिला शुरू हो जाता है, जब से शरीर धारण करते तब से बीमारी का सिलसिला शुरू हो जाता है। तो जन्म मृत्यु जरा और व्याधि ये बहुत भयानक कष्ट है, और इन कष्टों के साथ साथ तीन प्रकार के ताप भी हैं। क्या ताप हैं वो? अधिदैविक, अधिभौतिक और आध्यात्मिक है। आध्यात्मिक ताप उसको कहते हैं जो हमारा मन और हमारा शरीर खुद देता है। आप जानते हैं मन इतना स्ट्रांग होता है, कभी कभी व्यक्ति को प्रेरित कर देता है फांसी लगाने के लिए। जो भी व्यक्ति फांसी लगाता है जानते हैं किसके कारण? जहर पीता है, फांसी लगाता है, या गाड़ी के नीचे जा करके अपनी जान दे देता है, वो व्यक्ति का मन जो है उसको पूरी तरह से पछाड़ दिया होता है। अपने मन को नियंत्रण न कर पाने के कारण या मन के बस में हो जाने के कारण वो व्यक्ति जो है अपने आप को बचा नहीं पाता है। हमारे एक इस्कॉन में सन्यासी हैं, सचिनंदन महाराज, ही इज़ फ्रॉम जर्मनी। तो उनके पिता जो थे कहते थे, वो एक बार बता रहे थे कि उनके पिताजी रेलवेज में, जर्मन रेलवेज में नौकरी करते थे, और जर्मन रेलवेज में नौकरी करते थे तो उस समय उनके नौकरी काल में उनके डिपार्टमेंट में एक घटना घट गई। एक टेक्नीशियन था, जो रेलवे वैगन होता है ना उसमें कुछ कोल्ड स्टोरेज वैगन भी होते हैं, तो कोल्ड स्टोरेज वैगन में उसको कुछ रिपेयर करने के लिए अंदर घुसा हुआ था। गाड़ी रुकी है, कोल्ड स्टोरेज बंद है, और वो कुछ रिपेयर करने के लिए कोल्ड स्टोरेज के अंदर उसका दरवाज़ा खोल करके अंदर घुसा हुआ है कुछ रिपेयरिंग करने के लिए। अचानक वो दरवाज़ा हवा के प्रेशर से या किसी और कारण से बंद हो जाता है, और वो व्यक्ति अंदर ही पड़ा पड़ा, उसको लगता है कि ये कोल्ड स्टोरेज बंद हो गया और उसमें वो फ्रीज होकर के मर गया। एक्चुअली वो फ्रीज होकर के नहीं मरा, पर जब उसको कोल्ड स्टोरेज को खोल के देखा गया तो उसका बॉडी जैसे कोई व्यक्ति फ्रिज होकर के मरता है, यानी बॉडी ब्लू हो जाता है, तो उसका पूरा बॉडी जो है वो ब्लू हो गया था। किसके कारण? क्यों? क्योंकि उसको ऐसी भावना आ गई, उसके मन ने उसको कन्विंस कर दिया कि यू आर ट्रैप्ड इनटू कोल्ड स्टोरेज एंड नाउ यू आर ट्रैप्ड इनटू कोल्ड, और बर्फ के कारण तुम मर रहे। और उसका मन उसको इस तरह से मार डाला कि उसका पूरा सिम्टम्स जो दिखा रहा था वो ठंडी के कारण मरने का सिम्टम दिखा रहा था। सो माइंड बहुत ताकतवर है, ये भी हमको बहुत कष्ट देता है। हमारा ये शरीर जो है हमको कष्ट देता है, इस पर मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं, आप सब लोग जानते होंगे। किसी व्यक्ति का भी शरीर ऐसा नहीं है या मन ऐसा नहीं है जो उसको तकलीफ नहीं देता है। उसके बाद में फिर अधिभौतिक ताप जो अन्य जीवों द्वारा प्राप्त होता है। अभी आपने मच्छर से तो दोस्ती नहीं किया था, मलेरिया तो मांगा नहीं था, पर वो आपको आकर के अकारण काट लेता है और मलेरिया का गिफ्ट दे करके जाता है। कोई चाहता है? रात को हम अच्छी नींद सोने के प्रयास कर रहे हैं, एक तो गाड़ी वालों का आवाज़ सुन करके नींद नहीं आती है, और जब इनकी आवाज़ थोड़ी बंद होती है तो कुत्ते भौंकना शुरू करते हैं, है ना? है या नहीं है? तो वो एक कष्ट है, रात भर नींद नहीं पाते हैं। किसके कारण? कुत्ते भौंक रहे हैं, मच्छर काट रहे हैं, गाड़ियों की आवाज़ आ रही है, पड़ोसी बड़बड़ कर रहा है, कोई दारू पी करके आया हुआ है, कुछ और तमाशा कर रहा है, जिनसे हमारा कोई लेना देना नहीं, अकारण हमको तकलीफ देते हैं। एक बार मैं आपके यहाँ कुरला से ही पकड़ करके रिक्शा पकड़ा, यहाँ से यहाँ कामगार नगर आने के लिए मट्टू माता जी के घर में जब प्रोग्राम होता था तो रिक्शा वाला ने मुझे पहचान लिया कि ये आदमी फर्स्ट टाइम दिख रहा है यहाँ पे, तो उसने बिठा लिया मुझे गाड़ी में, और गाड़ी में बिठा करके वो बोलने लगा 150 रुपया देना होगा तुमको। मैं बोला मीटर से चलना है, मुझे मालूम नहीं था कितना डिस्टेंस है, कितना खर्चा आएगा। मैं बोला आपको मीटर से चलना है तो चलो, नहीं तो फिर आप हमको यहीं उतार दो। बोलता है नहीं उतारूंगा, तुमको 150 रुपया देना ही होगा। अननेसेसरी झगड़ा करना शुरू किया उसने, बहुत दूर की बात नहीं, यही कुरला की बात है। तो ऐसे अनेक जगह पे लोग मिलते हैं, आपको कष्ट देने के प्रयास में लगे जाते हैं। एक बार मैं रात को प्रोग्राम करके कुरला गोरेगांव से आ रहा था, एक व्यक्ति जो है वो सामने आकर के बैठ गया। अभी सामने आकर के बैठ गया तो मेरी तरफ ऐसे टक टक टक्की लगा करके देखने लगा। मैं हाथ में माला लेकर के जप कर रहा था तो वो भी कुछ अपने आप से जादू टोना करने लगा, और जादू टोना करके करने लगा। तो मुझे उसके हिस्से थोड़ा डिस्टर्बेंस लगने लगा कि ये क्या कर रहा है। तो मैं दूसरी सीट खाली थी, वहाँ से उठ के दूसरी सीट पे जा कर के बैठ गया, तो मेरी तरफ उस सीट से उठ के देखने लगा वो। फिर देखते देखते वापस आकर के वो मेरे सामने जो सीट खाली थी वहाँ वापस आकर के बैठ गया। और आकर के फिर से वो कुछ बोलना शुरू किया अननेसेसरी। सो नेक्स्ट स्टॉप पे मैं उतर गया। जब मैं उतर गया तो उसके बावजूद भी वो दरवाजे पे आकर के बाहर देख रहा है कि उतर गया ये। कोई लेना देना नहीं, कुछ नहीं, पर अननेसेसरी आकर के लोग जो है परेशान करना शुरू कर देते हैं। इसको कहते हैं अन्य जीवों के द्वारा प्राप्त कष्ट। और फिर प्राकृतिक आपदा, अधिदैविक प्राकृतिक आपदाएं, बारिश आ जाता है, भूकंप आ जाता है, पानी भर जाता है। यहाँ आप लोगों ने कुरला में भी महसूस किया होगा कुछ समय पहले, है ना, 6-7 साल हुए होंगे, बहुत सारे लोगों के घर में पानी भर गया था, बहुत सारे लोगों का तो पूरा बिजनेस लाइफ बर्बाद हो गया। लोग सोचते रहेंगे कि मैंने ऐसा क्या गलती किया था जिसके कारण ये हुआ, पर होता है, भूकंप आता है। ऑफ कोर्स हर एक चीज़ के पीछे कोई ना कोई कारण है, पर हम शायद उस चीज़ को नहीं जानते हैं। वो हम लोग पांचवें सेक्शन में, पांचवें सत्र में डिस्कस करेंगे कि उसके पीछे कारण क्या है, जिसे हम इस समय नहीं जान पा रहे हैं। सो, इस तरह से मनुष्य जीवन जो है वो हमको भगवान ने दिया है किसके लिए, ये सारी जिज्ञासाएँ करने के लिए कि मेरे जीवन में इतना कष्ट क्यों आता है, और क्या मैं कष्ट भोगने के लिए बना हूँ। तो जब जीवन में आकर के जिज्ञासा करेगा तो उच्च जीव योनियों में उसको प्रमोट कर दिया जाता है, और अगर जिज्ञासा नहीं करेगा कि मेरा जन्म क्यों हुआ है, मेरे जन्म का क्या पर्पस है, तो फिर उसको पशु योनियों में फिर से धकेल दिया जाएगा। भगवद गीता के दूसरे अध्याय में भगवान कहते हैं ना यह विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अपस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात्। भगवान कहते हैं कि मनुष्य अगर ये कृष्ण भावनामृत का मार्ग स्वीकार करता है तो इस कृष्ण भावनामृत के मार्ग के प्रयास में ना यह अभिक्रम नासो अस्ति, किसी भी प्रकार का नाश नहीं है। जितना कुछ अचीव कर लिया है उतना उसको जन्म जन्मांतर तक बैलेंस रहेगा। हाँ, प्रत्यवायो न विद्यते, और उसका कुछ उल्टा इफेक्ट नहीं होगा, उल्टा इफेक्ट नहीं होगा उसका कुछ। प्रत्यवाय मतलब उल्टा इफेक्ट नहीं होगा। और ऑफ कोर्स इसके ऊपर, इस श्लोक के ऊपर अकेले ही बहुत बड़ा लेक्चर दिया जा सकता है, पर वी हैव नो टाइम टू गो थ्रू दैट। सो प्रत्यवायो न विद्यते, और थोड़ा सा भी किया हुआ हमको निम्न योनि में फिर से पशु योनि में या कीट योनि में वापस ढकेलने से हमको ये बचा लेता है। पर जो व्यक्ति ऐसा नहीं करता है, तो आपने कल वो वीडियो में देखा होगा, अगर अधर्म की गाड़ी पकड़ करके जाएंगे तो लास्ट में जब मृत्यु का स्टेशन आता है तो उसके बाद में कहाँ इंतज़ार किया जाता है, नर्क लोक में। हाँ, और नर्क लोक में जा कर के वहाँ पर क्या होता है उसमें तो इतना नहीं बताया है, पर शास्त्रों में बताया है 84 लाख नर्क भी है। उसमें से 24 नर्क जो है वो मोस्ट प्रोमिनेंट है। उसमें से कुछ नर्क हैं जिसको कहा जाता है कृमि भोज्य नर्क, कुंभी पाक नर्क। कृमि भोज्य नरक एक ऐसा नर्क है जहाँ पे जीव जो जाता है उसको कीड़ों के पिट में डाल दिया जाता है, कीड़ों के टैंक में। वो उसी कीड़े उसको खाते हैं, और वो उसको कुछ भोजन पानी नहीं है तो वही वो कीड़ों को भी खाता है। इस तरह से उसको अपनी जीवन जीना पड़ता है। जो लोग और ऐसे नरक में कौन जाते हैं जानते हैं, कृमि भोज्य नरक में। एक बार राधा गोविंद महाराज बता रहे थे कि दोस हु ईट इनडिस्क्रिमिनेटली, जो लोग बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के क्या खाना है क्या नहीं खाना है, कहाँ से खाना है क्या कैसे खाना है, भगवान को अर्पण करना चाहिए नहीं करना चाहिए, बस जो कुछ सामने आया उसको भक्षण कर लेते हैं, नो डिस्क्रिमिनेशन, सच पीपल लैंड इनटू कृमि भोज्य नरक। देन असी पत्रक वन नरक है, जहाँ पे जीव को ऐसे वन में लेके जाया जाता है, ऐसे वृक्षों के बीच में ले जाके लटका देते हैं, जिसमें उसके पत्ते जो हैं वो चाकू की तरह से, तलवार की तरह से होते हैं, जिसमें दोनों तरफ धार होती है, और उसको यमदूत ले जा करके लटका देते हैं और फिर पेड़ के पत्ते हिलाना शुरू करते हैं, तो वो पत्ते गिरते हैं उसके शरीर को छेदते हुए नीचे गिरते हैं, बाद में यमदूत और रस्सी काट देते हैं और वो फिर तलवार जैसे पत्ते जो हैं उसमें वो गिरता है, और इस तरह से छटपट आता है, उसका शरीर छलनी हो जाता है और इस तरह से छटपट आता है, लेकिन मर नहीं सकता है। कुंभी पाक नरक है, जो लोग मांस भक्षण करते हैं, दूसरे के शरीर को तेल में यहाँ पे भूज करके और उसको जब रोस्ट करके उसको खाते हैं, ऐसे लोगों को वहाँ पे एक नरक इंतज़ार करता है, उसको कहते हैं कुंभी पाक, यानी तेल से खौलता हुआ बड़ा बड़ा बर्तन होता है, उसमें यमदूत आपको आपके शरीर के साथ ही जिंदा डाल देते हैं उसमें। तो ऐसे जगह में जाकर के हमको ये सारे कष्ट भोगने पड़ेंगे। तो चॉइस हमारा इसी जगह पे है, क्यों, क्योंकि हम आगे जाकर के समझेंगे कि किस तरह से मनुष्य जीवन जो है वो एक जंक्शन है। 84 लाख में मनुष्य जीवन बड़ा दुर्लभ है, बहुत कठिनाई से प्राप्त होता है, और यहाँ से ही हम अपना मार्ग बदल सकते हैं। जब हम जंक्शन में जाते हैं वहीं से हम ट्रेन बदल सकते हैं। अगर गलती से हमने जंक्शन से कोई दूसरी ट्रेन पकड़ ली तो नहीं बदल सकते हैं। हम जंक्शन पे पहुंचेंगे तभी वहां से हम दूसरे ट्रेन में वापस जा सकते हैं। तो मनुष्य जीवन जो है एक जंक्शन की तरह से, यहां से हम अपना चेंज कर सकते हैं। इसीलिए बहुत आवश्यक है कि हमको क्या जिज्ञासा करनी चाहिए। ये अनेक प्रकार की योनियां हैं, इसमें भागवत में बताते हैं, इस श्लोक में, ये 11th canto का श्लोक है, निदेह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरुकर्णधारम मया कुलेन नभस्तेरितम पुमान भवाद्धिम न तरे स आत्महा। हम लोग ईशोपनिषद पढ़ा रहे थे, तो ईशोपनिषद के 4th श्लोक में बताते हैं, असुर्या नाम ते लोक अंधेन तमसा भृता तामस्ते प्रेत्या अभिगच्छन्ति एके च आत्महनो जना। जो लोग अपनी आत्मा का हनन करते हैं, आत्मा के हत्यारे जो लोग हैं, यद्यपि भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि आत्मा को नष्ट नहीं किया जा सकता है, न जायते मृियते वा कदाचित नायम भूत्वा भविता वा न भूयो अजो नित्यम शाश्वतोयम पुराणे न हन्यते हन्यमाने शरीरे। शरीर का पतन होने पे आत्मा का हनन नहीं होता है। तो फिर इस ईशोपनिषद में क्यों कहा गया है कि आत्मा का जो हत्यारा होता है उसको असुरिया नाम लोक में जन्म लेना पड़ता है, ऐसे लोक में जन्म लेना पड़ता है जहाँ सूर्य की किरणें तक नहीं आती हैं। तो आत्मा का हत्यारा कौन होता है ये ढूंढ रहा था मैं जब, तब ये श्लोक मिला। श्लोक में बताया गया है कि जीव को बहुत दुर्लभ मनुष्य शरीर जो है समहाउ और अदर सुलभ हो जाता है। निदेह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम, यद्यपि ये दुर्लभ है फिर भी समहाउ और अदर भगवान की कृपा से मेरे कुछ पूर्व कर्मों से सुकृत कर्मों से मुझे ये प्राप्त हो गया है। और ये एक इस ऐसा बोट है, एक ऐसे नौका की तरह, सुदृढ़ नौका की तरह से है जिसको बड़े ढंग से सुकल्पित किया गया, कल्पित करना मतलब डिजाइन किया गया, बनाना है। तो ये मनुष्य शरीर को भगवान ने बड़ी कठिनाई से बड़े अच्छी तरीके से इसको इस तरह से बनाया है जो पूरी तरह से स्टडी है, और भव सागर को जन्म मृत्यु का जो ये सागर है, भव माने होता है रिपीटेशन, जन्म मृत्यु का जो ये रिपीटेशन है इसीलिए इसको सागर कहा गया। क्यों? क्योंकि सागर पार करना बड़ा आसान नहीं होता है, उसको पार करने के लिए जहाज चाहिए, बोट चाहिए, तो मनुष्य शरीर वो बोट दिया गया है। तुलसीदास जी भी लिखते हैं बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। ये मनुष्य तन जो है देवताओं के लिए भी दुर्लभ है लेकिन जीवों को समहाउ और अदर ये दुर्लभ शरीर भगवान की इच्छा से या भगवान की कृपा से प्राप्त हो गया है। साधन धाम ये एक ऐसा फैसिलिटी है जिसको प्राप्त करके व्यक्ति भगवत धाम को जा सकता है, जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो सकता है। लेकिन जो व्यक्ति इसका उपयोग जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होने के लिए न करके इसको केवल निम्न इंद्रिय तृप्ति के लिए भोग करना चाहता है, वो इंद्रिय तृप्ति के भोग में एक्चुअली वो अन्य जीवों की तरह से इंद्रिय तृप्ति कर भी नहीं सकता है इसके शरीर के साथ में। ये मनुष्य देह में उतनी कैपेसिटी नहीं दी गई है कि आहार निद्रा भय मैथुन का जो इंद्रिय तृप्ति है वो मनुष्य शरीर में कोई प्राणी कर सके, मनुष्य शरीर में नहीं पॉसिबल है। उसके लिए अन्य शरीर भगवान दे देंगे जब हमको वही चाहिए, तो इंद्रिय तृप्ति मनुष्य शरीर फिर से विड्रॉ कर लिया जाएगा। तो मनुष्य शरीर का जो भगवत धाम जाने के लिए अपने आप को मुक्त करने के लिए उपयोग नहीं करता है वो आत्महत्यारा कहलाता है। और जो आत्महत्यारा होता है उसको फिर अनेक निम्न योनियों में घूमना पड़ता है। इसीलिए हमें समझना चाहिए कि हमारी इस समस्या का समाधान कहाँ पर है। हम लोग सोचते हैं कि हमारी ये समस्या जो है ये हम भौतिकता का विकास करके हम इसको साध्य कर लेंगे, लेकिन भौतिकता के विकास से ये साध्य होने वाला नहीं है। इसलिए हम यहाँ पे एक प्रश्न करते हैं, यह क्या भौतिक प्रकृति इन समस्याओं का, इन असली समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करता है, करता है या नहीं करता है? तो हम देखेंगे कि ये वास्तव में करता है लेकिन बहुत क्षणिक तरीके से। हमें दुख है तो दुख थोड़ी देर के लिए चला जाता है, और ये जो समस्या का समाधान करता है ये समस्या का समाधान किस प्रकार का है जानते हैं आप? जैसे कोई व्यक्ति अगर डूब रहा है तो उसको बचाने वाला जो है पानी में कूद तो गया और उसको बचा के लाने के बजाय उसका कोट निकाल करके बाहर लेके आता है। वो व्यक्ति तो डूब गया लेकिन उसका कपड़ा निकाल करके बाहर लेके आए और ताली ठोके कि मैंने उसको बचा लिया। ये बचाना नहीं कहलाता है। उसी तरह से जो ये भौतिक समस्याएं हमारे लिए समाधान प्रस्तुत करती हैं जन्म मृत्यु जरा व्याधि का, तो व्याधि बीमारी जो है हम सब बीमार पड़ते हैं, और जब बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर से दवाई लेते हैं, दवाई खा के थोड़ी देर के लिए आराम हो जाता है, फिर से बीमार पड़ जाते हैं कि नहीं पड़ जाते? बताइए। कैंसर के कितने पेशेंट मैंने देखे हैं, दवाई लेते हैं बेचारे, कभी कभी तो उनको वो दवाई ही नष्ट कर देती है जो उनका क्या कहते हैं उसको, केमोथेरेपी आदमी को जल्दी मार देती है, उसका बॉडी को एकदम से कमज़ोर बना देती है। तो क्षणिक राहत मिलती है लेकिन अंत में वो रिलैप्स होकर के या बहुत सारे टॉबलेट्स के या मेडिसिन के जो केमिकल मेडिसिन है उसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में भी आप जानते होंगे, हैं? आई डोंट वॉन्ट टू गो सो मच इन टू डिटेल ऑफ दैट, बट यू नो दैट बेटर। सो स्थायी समाधान नहीं प्रस्तुत कर सकते हैं। जैसे देखिए, अगर कोई व्यक्ति बुढ़ापे के कारण उसके बाल सफ़ेद हो रहे हैं तो भौतिकता क्या प्रोवाइड करती है? हेयर डाई लगा लो। तो कुछ लोग सोचते हैं हम हेयर डाई लगा करके अपने बाल सफ़ेद बाल को काले कर लेंगे तो काले हो जाएंगे, पर सफ़ेद काले तो कर लिए और लेकिन थोड़ी देर के बाद जब वो फिर से उगने लगता है तो दो लेयर दिखने लगता है ना, ऊपर काला नीचे वाइट या कुछ लोग मेहंदी वगैरह लगा लेते हैं तो वो ट्राई कलर भी हो जाता है है ना उसी तरह से चेहरे पे अगर झुर्रियाँ लटकने लगती हैं तो लोग प्लास्टिक सर्जरी कराने लगते हैं यंग दिखने के लिए। भारत में तो इतना ज़्यादा प्रचलित नहीं है अभी, लेकिन पाश्चात्य देशों में बहुत ज़्यादा प्रचलित है। बीमारी हुआ, सिर दर्द हुआ तो कोई पेन किलर खा लेते हैं, हाँ उच्छ्वास की तकलीफ होने पर ऑक्सीजन का ट्यूब लगा लेते हैं, जन्म से बचाना है तो लोग क्या करते हैं उसको बचाने के लिए गर्भ निरोधक बहुत सारे कंट्रासेप्टिव्स यूज़ करना शुरू करते हैं। दैट इज़ नॉट द सोल्यूशन, दैट इज़ नॉट द सोल्यूशन, इसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। सो भौतिकता का विकास इस वैश्विक स्तर पर वैश्विक और स्थानीय स्तर पर अनेक समस्याओं को उल्टा जन्म देते हैं। ये आप देखिए, मैंने कुछ नोट करके लाए हैं, यू कैन जस्ट रीड आउट। मोटर गाड़ी समस्या जो है वो हम किस लिए मोटर गाड़ी का सर्च किए कि हमारा डिस्टेंस बहुत जल्दी कवर कर सके, पर उसके साथ साथ में और भी बहुत सारा बीमार आता है, स्वास्थ्य के लिए जोखिम है, वायु प्रदूषण है, हाँ उसमें वायु प्रदूषण के कारण हमारी आयु घटना हो जाती है, कम होने लगती है, ओजोन लेयर से अल्ट्रावायलेट विकिरण के प्रवेश के कारण असाध्य बीमारियाँ होती हैं, हाँ माइक्रो ओवन में पकाया हुआ पदार्थ स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, कंप्यूटर स्क्रीन के विकिरण से दीर्घकाल तक सिर दर्द होने लगता है, ऐसे बहुत सारे मोबाइल के कारण सरदर्द, कैंसर, हृदय रोग इत्यादि होने लगते हैं, रेडियोधर्मी वस्तुओं के उपयोग के कारण, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जिसको बोलते हैं, जिससे ये BRC वगैरह में रहने वालों को ये ज़्यादा प्रॉब्लम होता होगा, उससे नपुंसकता, तनाव इत्यादि आते हैं, आधुनिक तेज गति इसके जीवन शैली के कारण मानसिक बीमारी हो रही है, प्लास्टिक के बोतलों को बार बार उपयोग करने से विषबाधा का भय रहता है, कलर TV से कलर ब्लाइंडनेस या मिर्गी इत्यादि का रोग लगने लगता है, बीमारियों से बचने के लिए डॉक्टर जैविक आहार की सलाह देते हैं कि आप लोग ऑर्गेनिक फूड खाइए, है ना, क्योंकि आजकल बहुत सारे फूड में क्या होता है केमिकल्स मिला रहता है। सो इन सब पॉइंट्स को लेकर के एक 12 बरस की एक छोटी बालिका, 12 बरस की या 8 बरस की एक छोटी बालिका जो है वो एक कविता लिखती है, द पैराडाइज, ये उस कविता का नाम है पैराडाइजेस ऑफ द लाइफ, यानी जीवन के अंतर्विरोध, जीवन में क्या क्या अंतर्विरोध आते हैं हमारे, हाँ सो उसके बारे में वो कविता लिखती है जिसको मैंने हिंदी में ट्रांसलेट किया, वो इंग्लिश में है एक्चुअली। उसमें वो लिखती है कि जिंदगी हमें सोचने के लिए बाध्य करती है, हमारी जो मानव जीवन है वो हमको सोचने के लिए बाध्य करता है क्योंकि हमारा जीवन शैली कुछ ऐसा है। क्या सोचने के लिए बाध्य करता है, क्या क्या घटनाएं होती है, देखिए वो लिखती है कि मानव इतिहास हमारे काल की इन विडंबनाओं को सदैव याद रखेगा कि हमारे पास ऊंची अट्टालिकाएं हैं पर हमारे विचार बड़े क्षुद्र हैं, सड़कें चौड़ी हैं पर हमारे दृष्टिकोण सकरे हैं, हम लोग विचार बहुत तुच्छ रखते हैं, बड़े घर हैं पर परिवार छोटे हैं, सुविधाएं बहुत अधिक हैं पर समय बहुत कम है, ढेर सारी पदवियां हैं पर ज्ञान अति तुच्छ है, अधिक जानकारियों पर विवेक बुद्धि की कमी है, हम लोग इतना सर्च करते हैं, इतना नॉलेज है लेकिन डिस्क्रिमिनेशन पावर ही नहीं है, क्या करना चाहिए क्या नहीं, इन्फॉर्मेशन युग बोलते हैं इसको, इन्फॉर्मेशन की कमी नहीं है लेकिन डिस्क्रिमिनेशन का प्रॉब्लम है, दक्षता की बहुतायत है, एक्सपर्टीज बहुत है लेकिन समाधान कर पाने में असमर्थ है, आप लोगों ने सुना होगा द डॉक्टर कहता है कि ऑपरेशन सक्सेसफुल बट पेशेंट डाइड, क्यों, क्योंकि उसमें अनेक प्रकार के स्पेशलिटीज होते हैं, पेट को तो चीर दिया लेकिन पेट चीरने के बाद में जो अंग को काटा है उस अंग को अलग डॉक्टर होता है उसका स्पेशलिस्ट, सिलाई करने का स्पेशलिस्ट अलग होता है, एनेस्थेसिया देने वाला स्पेशलिस्ट अलग होता है, यानी पूरी डॉक्टरों की एक टीम लगती है एक छोटी सी बीमारी को दूर करने के लिए, है ना, तो डॉक्टर कहता है मैंने मेरा काम तो बराबर किया लेकिन उसका काम गड़बड़ हो गया इसलिए प्रॉब्लम हो गया, पेशेंट मर गया, अभी किसके कारण प्रॉब्लम हुआ दैट इज अनदर इश्यू, लेकिन रिजल्ट क्या आया, रिजल्ट आया कि पेशेंट नष्ट हो गया, चाहे डॉक्टर एक्सपर्ट था चाहे कुछ भी था, हाँ लेकिन पेशेंट तो मर गया, एनेस्थेसिया देने वाले ने डोज ज़्यादा दे दिया, कम दे दिया, या ब्लड रोकने वाले ने ब्लड ठीक से नहीं रुकाया, आपने देखा होगा ऑपरेशन टेबल पे बहुत सारे डॉक्टर एक साथ काम करते हैं, एक आदमी कुछ और करेगा, एक आदमी कुछ और करेगा, उसमें एक का भी एक्सपर्टी नष्ट हो गया, और उसमें एक व्यक्ति एक चीज़ के लिए एक्सपर्ट होता है, दूसरा दूसरे के लिए, और उसमें वो अगर थोड़ा सा भी मिसमैच हो गया, वो अगर व्यक्ति समय पर मौजूद नहीं है तो दूसरा उसको कंट्रोल करने में सक्षम नहीं है। सो ये सारी प्रॉब्लम्स है इसमें। औषधियों की बहुतायत है पर बीमारियों में कमी नहीं हो रही है, संपत्तियां बढ़ रही हैं पर जीवन मूल्य घट रहे हैं, बाह्य जगत को तो जीत लिया है पर आंतरिक स्तर पर हम परास्त हो गए हैं, वायुमंडल को तो शुद्ध कर रहे हैं पर आत्मा को दूषित कर रहे हैं, कणों को तोड़ रहे हैं पर अपनी संकीर्ण मानसिकताओं को नहीं, आमदनी बढ़ रही है और मौलिकताएँ घट रही हैं, संख्या बढ़ रही है पर गुणवत्ता घट रही है। मैं एक अभी आने के समय एक वीडियो देख रहा था, सोचा आपको दिखाऊंगा, पर वीडियो ज़्यादा दिखाऊंगा तो बोलने का समय नहीं मिलेगा, पर मैं बताता हूँ उस वीडियो में क्या दिया गया है। एक वीडियो ऐसा दिखा रहा है कि एक लेडी है अपने घर में, वो भागवतम का क्लास दे रही है, बाकी सारी महिलाएं बैठी हुई हैं और वो भागवतम का क्लास दे रही है, उसका छोटा बच्चा भी भागवतम का क्लास उसका सुन रहा है। तो वो माँ कहती है क्लास देते देते कि गरीबों पर दया करना चाहिए, दुखी जीवों की पर दया करना चाहिए, और ऐसे सब बहुत सारी बातें बताती है, और उसके बाद में क्लास ख़त्म हो जाता है, बहुत अच्छी अच्छी बातें बताती, क्लास ख़त्म हो जाता है, फिर उसका बच्चा भी सुनता रहता है, देखता रहता है, और देख करके उसको लगता है कि ये मेरी माँ जो बता रही थी। फिर उसी समय एक भिखारी आता है बहुत मैले कुचले कपड़े पहन करके, और बोलता है मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ रोटी दीजिए, रोटी के लिए याचना करता है। तो उसकी माँ जो है टीवी देख रही है, और देख के ही वो सोफे पे बैठे बैठे उस भिखारी को डांटती, भाग जा, गंदा बास आ रहा है तुम्हारे शरीर से, उसको भगा देती है। और उसी समय एक दूसरा थोड़ा बना ठना साधु आता है, और वो बोलता है भिक्षाम दे ही, तो उस साधु को भिक्षा देने के लिए वो बहुत सारा अनाज लेकर के निकलती है और उसको भिक्षा देती है। तो वो बच्चा पूछता है माँ अभी एक भिखारी आया था, वो रोटी मांग रहा था, तुमने उसको डांट करके भगा दिया, छोटा बच्चा था, और फिर ये बड़ा साधु आया, ये जो ज़्यादा क्वालिफाइड दिख रहा है, तो तुमने इसको सब कुछ ले जा करके दे दिया। माँ बोलती तू मुझे शिक्षा मत दे, चुप बैठ। फिर उसका पिताजी जो है वो उसका पिताजी भी ऐसे कुछ लोगों को बैठ करके शिक्षा दे रहे हैं कि सबके साथ में मदद करनी चाहिए, सबका ये करना चाहिए। उसी समय एक छोटा सा स्टूडेंट आता है, बोलता है कि मैं स्कूल में जा रहा हूँ और मेरे घर में स्कूल का फीस भरने के लिए पैसे नहीं है, आपके पास में बहुत सारे पैसे हैं तो मेरे स्कूल की फीस 100 रुपये है, आप कृपा करके मुझे 100 रुपये दे दीजिए, नहीं तो आज स्कूल से मुझे निकाल दिया जाएगा। तो उसका पिताजी उस बच्चे के सामने बोलता है कि मेरे पास में फीस देने के लिए, तुम्हारे फीस देने के लिए मेरी इच्छा तो है, लेकिन मेरे जेब में कुछ पैसे नहीं, अपना जेब ऐसा उल्टा करके दिखाता उसको। और थोड़ी देर के बाद में कुछ पॉलिटिशियंस लोग आते हैं चंदा मांगने के लिए तो वो उनको जा करके अपने बैग से नोट का गंडी निकाल करके देता है। तो बच्चा पूछता है पिताजी आप ये क्या कर रहे हैं? वो बच्चा जेन्युइन फीस मांगने के लिए आया आपसे, आपने उसको फीस नहीं दिया, लेकिन ये पॉलिटिशियंस को पॉलिटिकल पर्पस के लिए आपने इतना सारा नोट उठा के दे दिया। पिताजी उसको डांटता है चुप बैठ, क्लास में चला जाता है, स्कूल में जाता है, स्कूल में जाता है तो टीचर शिक्षा देता है, टीचर शिक्षा देता है कि आज तक हम लोगों ने इतना ही पाठ पढ़ाया है, कल जो है टीचर जो दूसरे जगह से इंस्पेक्शन के लिए आने वाले हैं इंस्पेक्टर लोग, तो आप सब लोग जो है टीचर बता देना कि इतने सारे पाठ पढ़ाए गए हैं जबकि उतना पढ़ाया नहीं गया है, और उसमें आज मैं तुमको जो पाठ पढ़ा रहा हूँ वही पाठ तुमको मैं कल भी पढ़ाऊँगा, और उस समय जब मैं तुमको क्वेश्चन पूछूंगा तो मैं ये क्वेश्चन तुमसे पूछूंगा तो उस समय ये उत्तर देना तुम लोग। उनको सबको सिखाता है। तो वो स्टूडेंट पूछता है कि टीचर आपने हम लोगों को ये सब सिखाया नहीं, फिर आप हमको ये बोलने के लिए क्यों बोल रहे हैं? तो टीचर कहता है कि चुप बैठो, तुमको नहीं मालूम है क्या करना है। फिर वो बच्चा जो है घर में चला जाता है, घर में जा करके दूसरे दिन वो घर से निकलता नहीं है स्कूल जाने के लिए। माँ बाप पूछते तो स्कूल नहीं जाएगा? वो कहता है मैं क्यों जाऊँ स्कूल में, मैं नहीं जाऊँगा स्कूल में। तो माँ बाप बोलते क्यों नहीं स्कूल में जाएगा, क्यों जाऊँ स्कूल में, टीचर जो है वो सिखाता एक चीज़ है और करता एक चीज़ है, घर में माँ बाप जो है शिक्षा एक चीज़ की देते करते एक चीज़ है, तो मैं ये स्कूल में जा करके वो चीज़ क्यों सीखी जो मुझे करना नहीं है, तो मैं नहीं जाऊँगा स्कूल में, आप सब लोग मुझे ऐसे ही शिक्षा देते हो। आज भी देखा जाए तो घर में सब लोग अपने बच्चों को डायरेक्टली इनडायरेक्टली ऐसी शिक्षा देते हैं। हाँ घर में है फोन आएगा तो बोलेंगे फोन पे बोल दो मैं नहीं हूँ घर पे है ना, तो बच्चे लोग क्या सीखेंगे, दिस इज कॉल्ड हिपोक्रेसी, दिस इज कॉल्ड हिपोक्रेसी। तो लोगों की संख्या बढ़ रही है, सब कुछ बढ़ रही है, लेकिन हमारी जो मोरालिटी है, जो हम बच्चों को सिखाना चाहिए, गुणवत्ता जो है, वो सारी चीज़ें घट रही हैं। ये है हमारा समुदाय। हाँ, हम बात बहुत करते हैं, प्रेम कम और घृणा अधिक करते हैं। जीविका अर्जित करना हमने सीख लिया है, पर जीवन जीना हमने नहीं सीखा है। जिंदगी में हमने अनेक वर्ष जोड़ लिए हैं, पर जीने की कला नहीं सीख सके। हमने चंद्रमा तक की दौड़ लगा ली है, पर अपने पड़ोसी से मिलने के लिए एक छोटी सी सड़क पार करने में भी कठिनाई होती है। हम लोग बोलते हैं हम एक दूसरे के साथ रिश्ता डेवलप करना चाहिए, घर में आपस में माँ बाप के अंदर, भाई बहन के अंदर अच्छे संबंध नहीं होते हैं, पड़ोसी के साथ अच्छे संबंध नहीं होते हैं, और फिर हम लोग जाकर के भाषणबाजी करते हैं कि जगत के साथ अच्छे संबंध बनाना चाहिए हमको। अधिक खर्च करने के बावजूद भी हमें बहुत कम मिलता है। हम खरीदते तो बहुत हैं, पर उपभोग नहीं कर पाते हैं। वर्तमान काल ऊंचे लोग पर छोटे और खोटे चरित्र वालों का है। उन्नत लाभ है, पर उथले व्यवहार हैं लोगों के। विश्व शांति का नारा लगाते हैं, पर घर घर में झगड़े करने वाले हैं। अधिक सुविधाएं हैं, पर मनोरंजन का अभाव है। बहुत खाने की सारी वस्तुएं हैं, पर सत्व रहित हैं। दुगुनी आमदनी है, पर अत्यधिक संबंध विच्छेद है। मनमोहक निवास है, पर बिखरे घर हैं। वर्तमान काल आडंबर और मिथ्याचार का काल है। यहाँ दिखावा तो बहुत है, पर वास्तविकता नगण्य है। इसीलिए जिंदगी हमें सोचने के लिए बाध्य करती है कि हम किस मार्ग पर जा रहे हैं, हमको किस मार्ग पर जाना चाहिए। इस तरह से हम एक्चुअली सुख ढूंढ रहे हैं, जो एक्चुअली बहुत अच्छी चीज़ है। हम सही वस्तु की तलाश कर रहे हैं, लेकिन सही वस्तु की तलाश कहाँ कर रहे हैं? गलत जगह में कर रहे हैं। सही वस्तु की जगह हम गलत जगह में खोज रहे हैं। हम अगर विचार करें कि कौन सी वस्तु कहाँ पे मिलती है, अगर कोई व्यक्ति भोजनालय में जाता है तो उसको वहाँ पे भोजन के सिवा और कुछ मिलता है? अगर व्यक्ति मदिरालय में जाता है तो वहाँ उसको क्या मिलता है? उसी तरह से अगर विद्यालय में जाएगा तो विद्या अध्ययन करेगा, पुस्तकालय में जाएगा तो केवल पुस्तकें मिलेंगी। तो ये भौतिक जगत, जिसको भगवान ने कहा है दुखालय, यहाँ पर अगर हम रहने का प्लान करते रहेंगे तो यहाँ हमको वास्तव में क्या मिलेगा? सो हम सुख ढूंढ रहे हैं, लेकिन कहाँ ढूंढ रहे हैं? ऐसे जगह पे जो दुखालय है। अगर पुस्तकालय में जा कर के हम भोजन ढूंढें तो मिलेगा? नहीं मिलेगा। हाँ, अगर पुस्तकालय में जा कर के या देवालय में जा कर के हम मदिरा ढूंढें तो मदिरा मिलेगी? ऑफकोर्स आजकल का कलयुग है, कुछ भी हो सकता है। केवल दुख मिलेगा। माम उपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम नापनवंती महात्मानम समसिद्धि परमागतिम। इसलिए यह जगत दुखालय है, यहाँ केवल दुख मिलेगा, सुख के लिए कहीं और जाना होगा। तो कहाँ जाना होगा, हमको अपने आप को प्रश्न पूछना होगा। मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है? इस सृष्टि की रचना किसने की? ये दुखालय किसने बनाया? वह व्यक्ति कौन है? इस रचना का उद्देश्य क्या है? किसके लिए बनाया? हम कौन हैं? क्यों बनाए गए हैं? यहाँ क्यों आए हैं हम लोग? जीवन, जीवित शरीर और मृत शरीर में भेद क्या है? यह प्रकृति क्या है? काल क्या है? कर्म क्या है? प्रकृति, जीव और ईश्वर का आपस में संबंध क्या है? ये सारे ज्ञान हमें कहाँ से मिलेगा? इसके लिए हमको किसके पास जाना होगा? गुरु, साधु और शास्त्र। तो जब तक हम अपने जीवन में ये प्रश्न नहीं करेंगे, शायद हम अपने जीवन में जी तो बहुत रहे हैं, लेकिन अब तक इन प्रश्नों के बारे में हमने विचार भी नहीं किया है। यही कारण है कि हम लोग ये पूरा दुखों का पुलिंदा जो है आपके सामने रखा। पर हमारा उद्देश्य जगत का दुख बखान करना नहीं है, हमारा उद्देश्य है आपको प्रेरित करना कि आप अपने मन में ये प्रश्न पूछो, और इस प्रश्न को पूछने के बाद में उसका उत्तर भी ढूंढो। उस उत्तर को कहते हैं तत्व, एब्सोल्यूट रियलिटी। हाँ, जो परम तत्व है, रियलिटी जो है, उसको ढूंढो, उसके बारे में जिज्ञासा करो। इसीलिए मैंने बताया था कल कि ये मनुष्य देह जो है वो एक जिज्ञासा करने के लिए मिला है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। जीवन का वास्तविक उद्देश्य तत्व जिज्ञासा अर्थात परात्पर भगवान के विषय में जिज्ञासा प्राप्त करना है। श्रीमद्भागवत में कहते हैं, जीवस्य तत्व कामस्य नेन्द्रिय प्रीति लाभो जीवेत यावत जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थ यश्चेह कर्म भी। इस जगत में आकर के जीव का एकमात्र उद्देश्य क्या है? इच्छाओं को कभी भी इंद्रिय तृप्ति की ओर आकृष्ट नहीं करना चाहिए, केवल जीवन धारण करने के लिए स्वस्थ जीवन की अभिलाषा करनी चाहिए, क्योंकि मनुष्य जीवन केवल परम सत्य की जिज्ञासा करने के लिए हुआ है। इसलिए मनुष्य जीवन और धर्म का और कोई लक्ष्य नहीं होना चाहिए। इसीलिए शास्त्र में बताते हैं कि जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए। भगवान कहते हैं, यज्ञार्थो कर्मणो यत्र लोकोयम कर्म बंधन तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। इसलिए हे अर्जुन, अपने जीवन में अपने कर्म के बारे में, अपने आप के बारे में जिज्ञासा करो और उसको समझने के बाद में उस तरह से कर्म करने का प्रयास करो। श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। अतः हे कुंती पुत्र, उसकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो, इस तरह तुम भव बंधन से मुक्त हो सकोगे। इसके बाद में फिर बताते हैं, ये मनुष्य जीवन बड़ा दुर्लभ है लेकिन कुछ काल के लिए मिल गया है। ये भी श्रीमद् भागवत के 11th कैंटो का एक श्लोक है, लब्ध्वा सुदुर्लभम इदम बहुसंभवान्ते मानुष्य अर्थदमित्यम अनित्यम अपीह धीर तुर्णम यतेत न पतेत मृत्यु यावत मिय श्रेयसाय विषय खलु सर्वतः स्यात्। अनेक जन्मों के बाद बड़े भाग्य से यह मानव तन प्राप्त होता है, यद्यपि यह नश्वर है फिर भी यह जीवन के परम लक्ष्य को साधने तथा पूर्णता की प्राप्ति करने का एक सुनहरा मौका प्रदान करता है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि जब तक यह शरीर मृत्यु द्वारा नष्ट नहीं कर दिया जाता तब तक पूर्णता की प्राप्ति के लिए विशेष प्रयास करता रहे, क्योंकि यह शरीर हमेशा मृत्युन्मुख है और कभी भी नष्ट हो सकता है। इंद्रिय तृप्ति तो घृणित से घृणित जीव योनियों में भी उपलब्ध है, पर कृष्ण भावनामृत केवल मनुष्य योनि में ही पॉसिबल है। और कृष्ण भावनामृत ही ऐसा वस्तु है जिसको प्राप्त करके जीव भगवत धाम को प्राप्त कर लेता है। इसीलिए सकारात्मक अर्थपूर्ण अस्तित्व की खोज के लिए क्या करना चाहिए, ब्रह्म जिज्ञासा करना चाहिए। परात्पर भगवान विषयक जिज्ञासा करना मनुष्य होने की सार्थकता है। जब तक व्यक्ति भगवान के बारे में नहीं पूछता है, अपने बारे में नहीं पूछता है और भगवान से और अपने बारे में संबंध को नहीं पूछता है, तब तक वो इस जगत से मुक्त होने में असमर्थ है। तो अब जब मनुष्य होने के नाते हमारे जीवन का कर्तव्य है कि तत्व की जिज्ञासा करें, तो वो परम तत्व क्या है उसके बारे में जानने के लिए कोशिश करेंगे। और ये हम लोग अभी यहाँ पे पहला सेक्शन ख़त्म करते हैं और इसके बाद में हम लोग दूसरे सेक्शन में जा करके दूसरे सत्र को अब यहाँ से आरंभ करेंगे। एंड व्हाट इज़ टाइम नाउ? हरे कृष्ण। सो जैसा कि मैं बताया कि जीवस्य तत्व जिज्ञासा, तत्व विचार। एक्चुअली शास्त्र में बताया गया है कि मनुष्य के लिए कितने प्रकार के विचार हैं। एक होता है तत्व विचार, एक होता है पुरुषार्थ विचार, हाँ, और एक और होता है। तो तत्व विचार किसको कहते हैं? तत्व विचार उसको कहते हैं कि वास्तविक तत्व क्या है, यानी हमारे जीवन का परम लक्ष्य क्या है। तत्व कितने तरह से है, रियलिटी क्या है, असलियत क्या है, असलियत को जानने के लिए तत्व विचार किया जाता है। अभी भगवान भगवद गीता के 10वें अध्याय में कहते हैं, मत्तः परतरम ना अन्यत किंचित अस्ति धनंजय। भगवान कहते हैं कि हे धनंजय, हे अर्जुन, इस जगत में मुझसे बढ़कर के सर्वश्रेष्ठ और कुछ भी नहीं है। तो व्यक्ति को चाहिए कि अगर वो इस जीवन में कुछ ढूंढ रहा है तो वो किसको ढूंढे, कहाँ उसके जीवन की पूर्णता प्राप्त होगी। ऑब्वियसली पूर्णता की प्राप्ति करने के लिए अगर तत्व से विचार किया हमने कि वास्तविक तत्व क्या है और ये एस्टैब्लिश कर लिए कि मान लीजिए वो तत्व जो है एब्सोल्यूट ट्रूथ कृष्ण है, तो कृष्ण को कैसे जाने, पुरुषार्थ विचार। पुरुषार्थ विचार मतलब अनेक प्रकार के मार्ग बताए गए हैं, उस मार्ग में कौन सा मार्ग वास्तविक मार्ग है जिससे हम सही तरीके से भगवान को समझ सकते हैं। क्यों? क्योंकि इस जगत में भगवान के बारे में लोगों की बहुत सारी भ्रांतियां हैं। तो इसको जानने के लिए हम लोग कोशिश करेंगे कि क्या भगवान का वास्तविक अस्तित्व है, और भगवान का अस्तित्व है ये बात कहाँ पे बताई गई है, जहाँ पे ये बात बताई गई है उसकी ऑथेंटिसिटी क्या है। हम लोगों को उसको क्यों स्वीकार करना चाहिए उसकी बात को, और उसकी बात को मान करके हमको क्यों चलना चाहिए। तो जब तक हम ये नहीं जानेंगे तब तक हम असलियत को नहीं जानेंगे। तो इसीलिए इसकी वैदिक पद्धति क्या है उसको जानने की इच्छा करते हैं, हम लोग कोशिश करेंगे। मैं ये फ़ोटो आपको जो दिखा रहा हूँ इससे आपको एक छोटा सा स्टोरी बताने वाला हूँ। स्टोरी ऐसी है कि एक गांव था, और गांव के लोग जो है एक साधु को अपने गांव में बुलाना चाहते थे, और उनको बुला करके भगवान के बारे में कुछ सुनना चाहते थे। तो गांव वालों ने आपस में एक टीम बनाया, एक कमेटी बनाया, और गांव के कुछ लोग जो है वो गए जंगल में साधु को ढूंढते ढूंढते, और एक साधु मिले। तो साधु जब मिले तो गांव वालों ने उनसे निवेदन बहुत किया कि आप हमारे गांव में आइए, हमारे गांव के सारे लोग भगवान के बारे में आपसे सुनने के लिए उत्सुक हैं, तो आप आइए और हमको बताइए भगवान के बारे में कि भगवान कौन है, तो भगवान कौन है या तत्व क्या है, रियलिटी क्या है, एब्सोल्यूट ट्रूथ क्या है, उसको जानने के लिए बुलाया उन्होंने। साधु बड़ा हिचकिचा करके फिर अंत में उन्होंने स्वीकार किया कि ठीक है मैं आऊँगा। जब वो उनके गांव में आए तो सारे गांव वाले एकत्रित हो गए। जब गांव वाले एकत्रित हो गए तो साधु बैठ गए और उन्होंने एक प्रश्न किया उनसे, उन्होंने एक प्रश्न किया कि आप यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं इनमें से भगवान के बारे में कितने लोगों को विश्वास है, भगवान के बारे में कितने लोग जानते हैं कि भगवान है अस्तित्व में, और कितने लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं, भगवान पे विश्वास नहीं है। तो उसमें कुछ लोगों ने हाथ उठा दिया और कुछ लोगों ने हाथ नहीं उठाया। तो साधु ने कहा कि देखो आप लोगों में कुछ लोगों को भगवान पे विश्वास है, भगवान के बारे में जानते हैं अच्छी तरह से, तो उन लोगों को आपके पता है तो वो जिनको नहीं पता है वो उनको बता देंगे, तो मेरा यहाँ क्या काम है। साधु उठ करके चल दिए। साधु जब चले गए गाँव वाले परेशान हो गए कि अरे साधु को लाए इतनी मिन्नत करके और फिर भी इन्होंने हमको कुछ सुनाया नहीं, बिना बताए चले गए। गांव वाले परेशान हो गए। फिर उन्होंने आपस में विचार किया कि नहीं साधु को फिर से दोबारा बुलाना चाहिए, पर अगर इस बार वो ये प्रश्न पूछते हैं तो हम सब लोग जो है हाथ उठा देंगे कि हम सब लोग भगवान के बारे में जानते हैं, तो फिर इस तरह की बात नहीं आएगी। तो फिर जा करके समहाउ अदर साधु को बुला करके लेके आते हैं। साधु फिर से आकर के जब वही प्रश्न करते हैं तो सब लोग हाथ उठा देते हैं। साधु कहते हैं कि आप सब लोगों को जब भगवान के बारे में पता है तो मैं क्या बताऊँगा, मेरा यहाँ क्या काम, चले गए। फिर गांव वाले सोच में पड़ गए, अभी साधु को रुकाया कैसे जाए। मिन्नत करके तीसरी बार जब उनको लेके आए फिर गांव वालों ने आपस में डिसाइड किया कि अगर इस बार पूछेंगे तो कोई भी बोलना मैं नहीं जानता हूँ, कोई हाथ मत उठाना। श्योर जब साधु आए तो अगेन ही आस्क दैट सेम क्वेश्चन, और इस बार किसी ने हाथ उठाया नहीं। तो साधु ने कहा कि यहाँ पे आप लोगों को भगवान के बारे में कुछ विश्वास नहीं है, तो ऐसे नास्तिक लोगों के बारे में मैं भगवान की क्या चर्चा कर सकता हूँ, यहाँ मेरा क्या काम है, उठ के चले गए। तो ये स्टोरी सुनने में हमको बड़ा हंसी आती है, लगता है मजाक है ना, पर अगर हम देखें तो हम लोगों की सबकी यही दशा है। हम लोग कभी भगवान को मान लेते हैं, कभी भगवान को नहीं मानते हैं, कभी पार्शियली मान लेते हैं, कभी पार्शियली रिजेक्ट कर देते हैं, और वो सब किसके लिए, आवश्यकता के अनुसार। जैसे एक बार गौर गोपाल प्रभु एक स्टोरी बता रहे थे कि उनके एक मित्र थे, उनके मित्र जो है वो एक इंटरव्यू के लिए गए थे। तो इंटरव्यू के लिए गया था, पर उसके दूसरे भी मित्र वहाँ पर इंटरव्यू के लिए गए थे। तो ये लोग जब कॉलेज के डेज में थे उसी समय ये बड़े नास्तिक थे, लेकिन ये उस दिन जो है जा करके जब इंटरव्यू पैनल में देखा कि इंटरव्यू पैनल में जो चेयरमैन है वो बड़ा टीका लगा के आया हुआ है, तो वो सोचने लगा, वो वहाँ पे लोगों को पूछा कि भाई यहाँ पे कुछ कुमकुम वगैरह मिलेगा क्या टीका लगाने के लिए। तो समहाउ और अदर किसी ने उसको, ऑफिस स्टाफ ने उसको थोड़ा सा लाल टीका के लिए कुछ दे दिया, तो लाल टीका लगा लिया। और उसके दूसरे दोस्त ने पूछा कि यार तुम तो बचपन से हमेशा नास्तिक बना रहा है, हम लोग जब कॉलेज में थे भी तभी भी तुम नास्तिकवाद का ही प्रचार करता था, उसी के बारे में बोलता था, आज इतना बड़ा टीका क्यों लगा लिया। बोला यार तुमको पता नहीं, तुम देखा क्या इंटरव्यू पैनल में जो बैठे हैं उसमें जो चेयरमैन बैठा हुआ है उसने माथे पर बड़ा टीका लगा रखा है, तो अगर मैं टीका लगा करके जाऊँगा तो थोड़ा फेवरेबल एटीट्यूड हो जाएगा उनका कि ये भी साधु है, ये भी संत आदमी जैसा है, ये भी भगवान को मानने वाला है, क्योंकि उसका टीका बताता है कि ये भगवान का मानने वाला व्यक्ति है। तो उसको टीका लगाने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन उसने कहा कि यहाँ पे शायद अपने फेवर में कुछ काम बन जाए इसलिए ये लगा लेते हैं। तो भारत देश में ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं, जहाँ जाते हैं जैसा देश होता है वैसा वेश बना लेते हैं। अगर जहाँ भगवान को गाली देने वाले मिल गए तो वहाँ भगवान को गाली देने लगते हैं, जहाँ भगवान को पूजा करने वाले लोग मिल गए तो वहाँ पे उनकी पूजा भी करने लगते हैं, है ना। एक बार मुझे एक रिक्शा वाला स्टेशन तक छोड़ने के लिए आया, तो रास्ते में बता रहा था कि गणपति के विसर्जन के लिए बहुत सारे लोग जाते हैं। तो कह रहा था कि गणपति के विसर्जन के लिए जा रहे थे, सामने बहुत डांस करते नाचते कूदते जा रहे थे, और मैं भी उसी में जा रहा था, देख रहा था पीछे पीछे। तो एक आदमी गणपति के आगे आगे जो गाड़ी चल रही उसके पीछे जा करके उसी गाड़ी पर बैठ करके पीछे बॉटल पी रहा है, और पीने के बाद में वही जब घाट पे पहुंचा समुंदर के किनारे तो जा करके हाथ में थाल लेकर के और गणपति की आरती कर रहा है विसर्जन करने के लिए। तो बोला उसका ये आचरण देख करके मैं सोचने लग गया कि ये व्यक्ति का क्या भाव है, गणपति को लेकर के आए हैं विसर्जन करने के लिए, बड़े भाव से नाच रहे हैं और पीछे जा करके क्या कर रहे हैं। एक बार गौरांग प्रभु एक स्टोरी बता रहे थे, एक बहुत फेमस गायक है, नाम नहीं पूछना, बड़ा भजन गाते हैं। गौरांग प्रभु भी उनके कंसर्ट में चले गए थे एक बार भजन सुनने के लिए, लेकिन वो फ्रंट डोर से जाने के बजाय वो पीछे के दरवाजे से आए। तो पीछे तो वहाँ पे उनका ये रहता है ना, वो ड्रेसिंग रूम रहता है, तो ड्रेसिंग रूम से आ गए वो अंदर। ड्रेसिंग रूम से आए तो देखे कि जो भजन गाने जाने वाले हैं वो पी रहे हैं, और वो पीने के बाद में मुंह पोंछ करके जब स्टेज पे आते हैं धोती कुर्ता पहन करके, और फिर स्टेज पे बैठ जाते हैं हारमोनियम लेकर के और साज के साथ में शुरू करते, ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन, हाँ वो तो गली गली हरी गुण गाने लगी, और पब्लिक हाँ वाह 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 शुरू हो गई। पर उनको किस चीज़ की लगन लगी थी और वो किस चीज़ में मगन हो गए, लेकिन सामने पब्लिक के क्या प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ये जो बात है ये भारत देश में बहुत तरीके से बहुत ये तेजी से आजकल बढ़ रहा है। उसका कारण एकमात्र ये है कि व्यक्ति को भगवान पे विश्वास ठीक से नहीं है, है तो पार्शियल है तो उसके पीछे कोई विश्वास होने का कुछ ना कुछ कारण है, इसके कारण वो भगवान को स्वीकार कर लेता है, रिजेक्ट कर देता है। राधा गोपीनाथ प्रभु के एक मित्र थे, वो दिल्ली में वो एक्चुअली पढ़ते थे, राधा गोपीनाथ प्रभु ने स्पीच थेरेपी में MSc किया हुआ है, और उनका एक मित्र था वो मेडिकल में डॉक्टर बन गया। डॉक्टर बनने के बाद में वो दिल्ली चला गया, दिल्ली में जा कर के वहाँ पे वो एक हॉस्पिटल खोलना चाहता था, कुछ 50 बेड का हॉस्पिटल खोलना चाहता था। तो उसने हॉस्पिटल तो बना लिया, और हॉस्पिटल का इनॉग्रेशन के दिन में सत्यनारायण की पूजा रखा, और इनविटेशन लेटर इनको भी भेज दिया कि आप भी आ जाइए, मैं हॉस्पिटल का इनॉग्रेशन कर रहा हूँ। तो इन्होंने सोचा मेरा मित्र है तो इसलिए गए वहाँ पे। जब वहाँ पे गए तो देखा कि ये मित्र जो है सत्यनारायण की पूजा का आयोजन कर रहा है, और वो पहले से बड़ा नास्तिक था। तो उन्होंने उसको पूछा कि भाई तुम तो पहले से ही नास्तिक है, फिर ये क्या प्रपंच कर रहे हो, क्या तुम्हारा मति बदल गई है, क्या तुम भक्त बन गए हो क्या फिर से, हाँ। तो कहा नहीं नहीं मैं अभी भी नास्तिक ही हूँ। तो फिर जब अभी भी नास्तिक हो तो ये प्रपंच क्यों। तो उसने कहा देखो भाई मैं 50 लाख खर्चा करके ये हॉस्पिटल बनाया हूँ, और ये पूजा करने के लिए 50 रुपये या 500 रुपये लगेंगे। अगर मान लो कहीं भगवान है और वो मुझसे खुश नहीं हुआ तो मेरा हॉस्पिटल नहीं चलेगा, तो उसको खुश करने के लिए 500 रुपये और खर्च कर देने में क्या बुराई है, हाँ। तो ऐसे बहुत सारे लोगों की भावनाएं होती हैं, भगवान को ज़रूरत पड़ने पर मान लेते हैं, भगवान को ज़रूरत पड़ने पर रिजेक्ट कर देते हैं। जैसे वो साधु के सामने गांव के लोग आए, तो भगवान हमारे मानने और न मानने का विषय नहीं है। हम में से कितने लोग सचमुच विश्वास करते हैं कि भगवान है, और भगवान में हम विश्वास क्यों नहीं करते हैं। अच्छा मैं आप लोगों से पूछता हूँ, बताइए आप में से कितने लोग को भगवान पर विश्वास है, हाथ उठाइए। मैक्सिमम लोग। और कितने लोगों को भगवान पर विश्वास नहीं है, बी फ्रैंक प्लीज। देखिए विश्वास है, मैं सब लोगों ने हाथ नहीं उठाया था है ना, ठीक है। आप अगर नहीं बोलना चाहते कि विश्वास नहीं है, पर एटलीस्ट जिन लोगों ने हाथ नहीं उठाया है वो लोग समझ लीजिए कि उनको भगवान पर विश्वास नहीं है, क्योंकि मैं दोनों से प्रश्न पूछना चाहता हूँ। जिन लोगों ने हाथ उठाया था मैं पहले उनसे प्रश्न पूछता हूँ, आपको भगवान में विश्वास है तो क्यों है, यस सो यू हैव फेथ ऑन गॉड. एनीबडी एल्स कैन टेल मी एनीथिंग? यस माता जी. अगर इसके विपरीत अनुभव आएंगे तो आपका विचार बदल जाएगा. हाँ, दिस इज गुड अंडरस्टैंडिंग. अच्छा, जिन लोगों ने मान लो अपने मन में सोचा कि मुझे भगवान पे विश्वास नहीं है, तो क्यों नहीं विश्वास कर रहे? व्हाई यू डोंट हैव फेथ ऑन गॉड? एनीबडी कैन टेल मी एनीथिंग? सो भगवान पे हमको क्यों विश्वास करना चाहिए? कुछ लोग बताते हैं कि कुछ लोग भगवान पे इसलिए विश्वास करते हैं क्योंकि भगवान सोचते हैं कि भगवान जो है वो बांसुरी बजाते हैं और मुझे बांसुरी बजाना पसंद है, तो चूंकि उनका और मेरा फेवरेट एक जैसा है इसलिए ही इज़ माय गॉड, है ना? या कुछ लोग ऐसे, बहुत सारे लोगों के अपने अपने आचरण जो होते हैं, अपने विचार जो होते हैं, उसके साथ भगवान के साथ कनेक्ट कर लेते हैं कि भगवान में ये है और मुझे ये अच्छा लगता है इसलिए वो भगवान है, ही इज़ माय हीरो. पर भगवान ऐसी चीज़ नहीं है. भगवान चाहे हमारे एक्सपीरियंस में हो या हमारे एक्सपीरियंस के परे हो, फिर भी भगवान है और उसके बहुत सारे प्रमाण हैं. उसमें से एक तो वो मतलब साइंटिफिक कम्युनिटी का प्रमाण है और दूसरा जो है वो शास्त्र का प्रमाण है. तो साइंटिफिक कम्युनिटी का क्या प्रमाण है, उस प्रमाण को हम लोग जानने की कोशिश करेंगे, और जो शास्त्र का प्रमाण है उस प्रमाण को जानने की कोशिश करेंगे. एक्चुअली ये जो प्रमाण शब्द है, प्रमाण का दो शब्दों से मिलकर के यह शब्द बना हुआ है, प्रमा और करणम. सो प्रमा या करणम इसका डेफिनेशन है, प्रमा या करणम प्रमाणम. सो प्रमा किसको कहते हैं? नॉलेज को प्रमा कहते हैं. दैट विच सर्टिफाइज माय नॉलेज, दैट इज कॉल्ड सर्टिफिकेट. प्रमाण पत्र, प्रमाण पत्र बोलते हैं ना हम लोग. हाँ, तो जो मेरे ज्ञान को पुष्ट करता है वो प्रमाण पत्र कहलाता है. सो इसीलिए हर चीज का कोई ना कोई प्रमाण होना चाहिए. सो ये हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि क्या प्रमाण है. एक पास्कल नामक एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने चार पॉसिबिलिटीज़ दिया. और चार पॉसिबिलिटी उन्होंने क्या बताया कि भगवान है और आप उनकी सत्ता स्वीकार करते हो और आपको फ़ायदा होता है, ये एक पॉसिबिलिटी दिया उन्होंने. दूसरा पॉसिबिलिटी दिया कि भगवान है और आप उनकी सत्ता नहीं मानते तो उनकी सत्ता न मानने के कारण आपको भुगतना पड़ता है. तीसरा पॉसिबिलिटी उन्होंने दिया कि भगवान है और आप धार्मिक जीवन जी रहे हो इसलिए शांत और सुखी हो. जैसे अभी आप लोगों में से दो जन में से एक जन का ऐसा कहना था कि चूंकि वो है इसीलिए ही गिव्स मी अंडरस्टैंडिंग नॉलेज एवरीथिंग, हाँ दैट पावर प्रोटेक्ट्स अस. और चौथा प्रमाण देते हैं, चौथा पॉसिबिलिटी बताते हैं कि भगवान नहीं है, आप मौज मस्ती का जीवन जीने के बाद अन्य लोगों की तरह तड़फ तड़फ करके मर जाते हो. जैसे चार्वाक मुनि थे ना, चार्वाक मुनि भारत में ऐसे बहुत सारे एथिस्टिक भी हो चुके हैं जो मुनि के नाम से प्रसिद्ध हैं. चार्वाक वॉज एन एथिस्ट एंड ही हैज प्रोपाउंडेड ए फिलोसफी. आज उसी की फिलोसफी जगत में लोग जो है बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं, नोइंगली और अनोइंगली. चार्वाक का फिलॉसफी क्या जानते हैं? ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत, यावत जीवेत सुखम जीवेत, भस्मीभूतस्य देहस्य किम पुनरभवत. क्या करते हैं? ऋण करो, घी पियो, मतलब बेग बोरो और स्टिल डू व्हाट एवर यू लाइक. भीख मांगो, चोरी करो, जो भी करने की इच्छा है करो, बेग बोरो और स्टिल व्हाट एवर यू वॉन्ट यू डू, इंजॉय योर लाइफ. आजकल यही चल रहा है. हाँ, पैसा कमाओ, पैसे से लाइफ को एंजॉय करेंगे. पैसा कैसे आ रहा है दैट इज़ नॉट ए मैटर ऑफ कंसिडरेशन. उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। कौन समझता है कि जिसके पास पैसा नहीं है, देखो कितना भुखमंगा रहता है, भीख मांगता है फिर भी मिलता नहीं है, तड़फ तड़फ के रहता है। हमारे पास में पैसा है, गाड़ी है, बंगला है, घोड़ा है, सब कुछ है। पैसा नहीं होता तो ये सब कहाँ से होता? मैं अपना ये सज्जबा किसको दिखा सकता? तो मैं ये इंजॉय कर रहा हूँ, दिस इज कॉल्ड फ्लिकरिंग हैप्पीनेस। हमारी दृष्टि दूर तक नहीं है। एक बार अमेरिका में प्रभुपाद को उनके एक डिसाइपल ने पूछा, प्रभुपाद यू टॉट अस द वे ऑफ धर्मा, वी आर फॉलोइंग द वे ऑफ धर्मा, हम धर्म का आचरण कर रहे हैं, यू टोल्ड अस टू फॉलो द फोर रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स, नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो इलिसिट सेक्स, वी आर ऑल फॉलोइंग दिस, यू टॉट अस टू चैंट द होली नेम, रीड स्क्रिप्चर्स, ईट ओनली प्रसाद, ऑल दीज थिंग्स वी आर डूइंग इट, बट लुक एट अस, हमारी ओर देखो, हमारे को 2 जून का भोजन मिलने के लिए बहुत कठिनाई होती है, और लुक एट दोज पीपल, दे ब्रेक ऑल द रूल रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स, दे डोंट फॉलो एनीथिंग, हाँ, दे ईट मीट, दे गैम्बल, दे डू नॉनसेंस एक्टिविटीज, एवरीथिंग दे डू, समहाउ आर अदर दे अर्न मनी, दे डोंट रीड स्क्रिप्चर, दे डोंट चैंट, दे डोंट गो टू टेम्पल और चर्च, नथिंग, एंड स्टिल दे आर इंजॉइंग देयर लाइफ, दे हैव बंगलोज, दे हैव सर्वेंट्स, दे हैव कार्स, दे हैव नेम, फेम, एवरीथिंग, एंड लुक एट अस, वी डोंट हैव एनीथिंग, सो वाई दिस इज? प्रभुपाद सेड, यू आर लुकिंग हिज प्रेजेंट लाइफ, आप उसका वर्तमान देख रहे हो, आप उसका भूतकाल देख चुके हो, या आप उसका भविष्य देख रहे हो, यू आर जस्ट लुकिंग हिज प्रेजेंट, यू डोंट हैव नॉलेज अबाउट हिज पास्ट, पास्ट में उसने क्या किया, और वर्तमान भविष्य में उसको क्या मिलने वाला है वो भी आप नहीं देख रहे हो, सो योर विजन इज ओनली पार्शियल। भूतकाल में हो सकता है इसने बहुत बड़ा धार्मिक कृत्य किया होगा जिसके एवज में उसको ये सारी फैसिलिटीज मिली है, और उस फैसिलिटी का ये आज लेकर के मिसयूज कर रहा है, तो उस मिसयूज करने का उसका परिणाम उसको भविष्य में मिलने वाला है वो तुमको नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ, सो डोंट बिकम लुक्रेटिक एट हिज लाइफ एंड एक्टिविटीज, फॉलो व्हाट स्क्रिप्चर सेज, जो शास्त्र बताता है उसको समझो। शास्त्र में बताया गया है कि भूतकाल में क्या करोगे तो वर्तमान में क्या पाओगे, और वर्तमान में उस पाए हुए चीज का जो जिस तरह से उपयोग करोगे उसका भविष्य काल में आपको क्या मिलेगा। अगर आप शास्त्र का ढंग से स्टडी करोगे तो आपको ये सारी चीज़ें बहुत तरीके से प्राप्त हो जाएंगी। पास्कल, इवन दो ही इज नॉट ए वेरी गुड डिवोटी, बट ही सेज दैट 4 में से 3 संभावनाएँ बताती हैं कि हमें भगवान को समर्पित हो जाना चाहिए। हाँ, इसीलिए व्यक्ति को चाहिए कि भगवान की शरण में चला जाए और भगवान को समर्पित होकर के भगवान को जानने का प्रयास करे। तो क्या भगवान के प्रमाण का कोई अस्तित्व है, अस्तित्व का कोई प्रमाण है, उसको हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। यू वॉन्ट टू सी वॉच ए वीडियो, हाँ, इट्स इन इंग्लिश, यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट फॉर दिस टू अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली। एक्चुअली दिस इज सो एक्सप्लिसिट यू विल ईजिली अंडरस्टैंड वेदर गॉड एग्जिस्ट और नॉट। इट्स और 15-20 मिनट तो हम लोग ले सकते हैं ना। सो आई कैन जस्ट शो यू सम स्लाइड्स, जो लोगों ने अंग्रेजी नहीं समझा होगा शायद उन लोगों को थोड़ा समझ में आ जाएगा। एंड आई ऑल्सो हैव वन मोर मूवी, एक मूवी नहीं है वो ड्रामा है, और पूना डिवोटीज दे हैव मेड दैट ड्रामा। इफ यू वॉन्ट वाइल टेकिंग योर प्रसाद यू कैन जस्ट वॉच दैट ड्रामा ऑल्सो, इट्स रिलेटेड टू दैट सेम थिंग। वो माय गॉड करके एक फिल्म आया था दैट डिसवेडेड पीपल फ्रॉम बिलीविंग ऑन गॉड, राइट, भगवान के ऊपर विश्वास करने के लिए लोगों का मति में भ्रमित किया था। उसके पॉइंट्स को रिफ्यूट करके पूना वालों ने एक अच्छा ड्रामा बनाया कि हाउ दैट ओ माय गॉड मूवी इज जस्ट ए डिसवेंस टू पीपल्स मेंटालिटी अंडरस्टैंडिंग प्रॉपरली अबाउट गॉड। लोग भगवान से लोगों को दूर करने के लिए ज़्यादा खर्चा करते हैं जितना कि भगवान के नज़दीक लाने के लिए। सो वो एक समझेंगे हम लोग। मैं आपको ये स्लाइड्स दिखा देता हूँ अभी, तो मुझे इसमें इतना ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि यू हैव अंडरस्टूड मोस्ट ऑफ आवर दिस थिंग्स, स्लाइड्स आर बेस्ड ओनली ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। सो भगवान के अस्तित्व को नकारने की तुलना में उनको स्वीकृति प्रदान करने वाले प्रमाणों की संख्या बहुत अधिक है। नास्तिक लोगों द्वारा दलील दी जाती है कि मैं भगवान को विश्वास नहीं कर सकता क्योंकि मैं उन्हें देख नहीं सकता। तो उसने अभी अपने मूवी में देखा कैसे प्रूव किया कि आप अंधेरे में अपना हाथ भी नहीं देख सकते, तो भगवान को देखने के लिए योग्यता तो चाहिए। और हम सिर्फ देखने के बेसिस पे भगवान नहीं है ऐसा कैसे बोल सकते हैं? भगवान को देखने के लिए हमारी योग्यता क्या है? देखना प्रत्यक्ष प्रमाण है, तो प्रमाण भी अनेक प्रकार के होते हैं। अभी इसमें देखिए एक ही डक है, इसको तीन जगह मिरर में रिफ्लेक्ट किया हुआ है, तो एक ही डक है या कितने डक है वो, पर दिख कितना रहा है? नास्तिक लोग यही दलील देते हैं, सर्वशक्तिमान परम दयालु सर्वत्र व्याप्त सर्वदर्शी और अनभिज्ञ भगवान के होते हुए ये कष्ट क्यों है, ये भेदभाव क्यों है? ये देख सकते हैं, कोई लोग गरीब है, कोई अमीर है। हाँ, नास्तिक लोग भगवान से मुख मोड़ लेते हैं, भगवान को जानना ही नहीं चाहते हैं। जैसे कोई व्यक्ति अगर आँख पर पट्टी बांध ले और कहे कि मुझे कुछ दिखाई नहीं देता है, हाँ सूरज आकाश में निकला है लेकिन अगर हम अपनी आँखों पर पट्टी बांध के रखेंगे तो सूरज को नहीं देख सकते हैं। उसी तरह से नास्तिक लोग भगवान को देखना नहीं चाहते, इसलिए भगवान को देखते नहीं। भगवान को प्रायोगिक या काल्पनिक अनुभव से या तो आधुनिक वैज्ञानिक तकनीकी से नहीं समझा जा सकता है। उनको कैसे समझा जा सकता है? शास्त्र कहते हैं प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेना, मैं आदि पुरुष गोविंद का भजन करता हूँ जिनके अचिंत्य गुणों से युक्त श्याम सुंदर स्वरूप का आँखों में प्रेमांजन लगा करके उनके भक्त सदैव हृदय में देखा करते हैं। 24 घंटा वो उनको भगवान को देखते रहते हैं। तो भगवान को देखने के लिए एक भक्त का दृष्टि चाहिए। केवल एक भक्त ही भगवान के सुवलित सुमधुर स्वरूप का साक्षात अवलोकन और आस्वादन कर सकता है। अगर वो एक व्यक्ति भक्त नहीं है तो भगवान को नहीं समझ सकता, नहीं जान सकता है। इसलिए हम लोग इन बातों पे डिस्कशन करना चाहिए, विशेष करके कि भगवान के अस्तित्व का प्रमाण क्या है, भगवान को कैसे देख सकते हैं और भगवान के विषय में कैसे ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। दीज आर द 3 टॉपिक्स इफ़ यू डिलीवर। लेकिन उस मूवी में ये सारा कुछ क्लियर कर दिया है कि हाउ वी कैन डू, सो आई डोंट नीड टू एक्सप्लेन यू सो मच। भगवान के अस्तित्व का प्रमाण क्या है? हम देखते हैं कि हमारे आवश्यकताएं बहुत सारी है और उन सब आवश्यकताओं की आपूर्ति है। जैसे हवा चाहिए हमें तो हवा है, पानी चाहिए पानी है, भोजन चाहिए भोजन है। हम में से कौन लोग हैं जो ये हवा पानी और भोजन को सप्लाई करते हैं? इज देयर एनीवन? अनाज चाहिए तो कौन देता है? हम खेती कर लेते हैं, मैन्युपुलेट कर लेते हैं। भगवान जैसे भगवत गीता में कहते हैं भूमि रपो अनलवायु मन खम मन बुद्धि रेवच अहंकार इतियम में भिन्ना प्रकृति अस्तदा। ये मेरी 8 प्रकृति जो अलग है उसको अपरमेयम इतस्तो अन्यम विद्धि में पराम जीव भूत महाबाहो ये इदम धारेते जगत। हम जीवात्मा के स्तर पे इनको मैनिपुलेट करके उनसे कुछ रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, पर ओरिजिनल चीज़ को हम प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। हम अर्थ को नहीं प्रोड्यूस कर सकते, वाटर को नहीं प्रोड्यूस कर सकते हैं, हम हवा को नहीं प्रोड्यूस कर सकते, जबकि ये हमारी प्राइमरी नेसेसिटी है। हाँ, इनके संयोग से हम कपड़ा बना सकते हैं, आटा बना सकते हैं, चपाती बना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, दैट इज़ मैनिपुलेशन। पर जो मेन इन्ग्रेडियंट है वो हम कहीं से भी कोई भी साइंटिस्ट नहीं बना सकता है। तो सभी चीज़ों को जो नियंत्रक करने वाला है, एक नियम और नियामक और अनुक्रम प्रबंध और अभिकल्प, हम ये जगत में जो देखते हैं अपने चारों तरफ वो क्या है? एक ऑर्डर है और एक प्रबंध है, इट्स ए परफेक्ट मैनेजमेंट। ये कहते हैं कि ये पृथ्वी जो है सूरज से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर स्थित है। अगर ये सूरज से थोड़ा सा क्लोज दूरी पर स्थित होती तो ये आग का गोला होती, जस्ट 1 इंच इधर उधर। और ये पृथ्वी अगर सूरज से 1 इंच जिस जगह पे स्थित है उससे अगर 1 इंच ज़्यादा दूर होती तो ये बर्फ़ का गोला होती। सो हु इज़ मैनिपुलेटिंग दैट इट स्टेज परफेक्टली इन दैट ऑर्डर सेम ऑर्बिट? देयर हैज़ टू बी सम कंट्रोलर, सो हु इज़ दैट कंट्रोलर? डिज़ाइन है हर चीज़ों में। फूल देखिए, अनेक प्रकार के फ्लावर्स होते हैं, उसमें डिज़ाइन है, वस्तुएँ हैं उसके डिज़ाइन है, हर्बीवोरस शरीर है, कार्निवोरस शरीर है, उसमें अलग अलग डिज़ाइन है। अगर आप केवल मनुष्य के एक आँख की रचना देखना की कोशिश कीजिए उसमें कितना डिज़ाइन है। आई हैव ए मूवी, उसमें बताया गया है कि ये कान जो है, हम लोगों कान में से कौन बोल रहा है कैसे पहचानते हैं? हाउ वी डिस्क्रिमिनेट द साउंड, ये मम्मी बोल रही है, पापा बोल रहे हैं, ये मेरे फ्रेंड की आवाज़ है, ये इसकी आवाज़ है। वो इसमें जो कान में साउंड वाइब्रेशन घुसता है ऐसा स्मॉल वेरिएशन के कारण हम उसको समझ सकते हैं कि कौन है। तो इतना वेरिएशन इसके अंदर, इतना परफेक्शन किसने दिया? Who has created that? और रचनाकार है जहाँ पे, वहाँ पे जहाँ पे रचना है वहाँ पे रचनाकार का होना आवश्यक है। तो ये सारी हमारी आवश्यकताएं हैं और उसकी आपूर्ति इस जगत में हम देख सकते हैं। पानी चाहिए तो पानी है, खाना चाहिए तो खाना है। हाँ, अब देखिए जैसे हर एक के लिए अलग अलग खाना है, कुछ के लिए जहर खाना होता है, कुछ के लिए दूसरा चीज़ खाना होता है। गाड़ी के लिए पेट्रोल या डीजल खाना होता है, मनुष्य के लिए डीजल और पेट्रोल खाना नहीं होता है। उसी तरह से शरीर के लिए पंच तत्व तो खाना हो सकता है, भूमि अपन अनल वायु खम्मन, लेकिन आत्मा भी तो इसी शरीर में रहती, तो आत्मा का खाना क्या है? आत्मा क्या खा के जिएगा? ये रोटी कपड़ा मकान, ये रोटी दाल चावल इत्यादि खा करके, हवा पानी लेकर के तो ये शरीर जी रहा है। अगर ये नहीं सप्लाई करेंगे तो शरीर मर जाएगा, आत्मा तो नहीं मरेगी। फिर आत्मा की उन्नति किससे होती है? उसका भोजन क्या है? कभी हमने विचार किया है? हम लोग शरीर के बारे में तो इतना विचार करते हैं, लेकिन आत्मा का क्या भोजन है वो भी जानना हमारी आवश्यकता है। भगवान उसके बारे में भी नॉलेज दिए हैं। यहाँ पे एक गाड़ी और उसके एक ड्राइवर की बात कही गई है। और ये संसार को जो बनाने वाला है, इस संसार को बनाने वाले ने प्रत्येक चीज़ों में उसके नियम और नियम बनाया है सारी चीज़ों का। सो नियामक के बिना अस्तित्व में आना संभव है। नियामक क्या है? जैसे देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं, असंवेदी जड़ पदार्थ भी निश्चित प्रकृति नियम का पालन करते हैं। अगर कोई प्रिज्म है तो प्रिज्म में भगवान ने एक ऐसा नियम बनाया कि उससे एक अगर लाइट डालेंगे, एक रे जाएगी सनराइज, तो वो जब बाहर निकलता है तो 7 डिफरेंट कलर्स का रेज बाहर आता है। हु हैज़ क्रिएटेड दैट? हम में किसी के अंदर इतनी शक्ति है कि ऐसा कोई चीज़ क्रिएट कर सकते हैं? नॉट पॉसिबल। रासायनिक पदार्थों में समायोजन है, इसीलिए उसको पीरियाडिक लॉ बोलते हैं। हाँ, न कि पीरियाडिक चांस में हुआ है, कोई चीज़ अपने आप से आ गया है। हर एक वस्तु में अलग प्रकार की रचना होती है, अलग उसका क्वालिटी होता है, उसका अलग स्वाद होता है, उसका अलग स्मेल होता है। आप जानते हैं ये सारा वेरिएशन किसके कारण है? उसके एटॉमिक स्ट्रक्चर के कारण है। और एटॉमिक स्ट्रक्चर मतलब उसका प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन हर एक एटम में मौजूद है। हर एक एटम में अलग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, अलग नंबर ऑफ प्रोटॉन है, उसका अलग प्रकार का बाइंडिंग है। केमिकल पढ़े होंगे आप लोगों ने, केमिकल इंजीनियरिंग तो उसमें है। एन टाइप बॉन्डिंग, पी टाइप बॉन्डिंग, ये सारा बॉन्डिंग, बॉन्डिंग से क्या होता है? उसका स्ट्रक्चर बदलता है। स्ट्रक्चर जब बदलता है तो उसका क्वालिटी बदल जाता है, उसका रूप बदलता है, उसका रंग बदलता है, उसका स्वाद बदलता है, सब कुछ बदलता है। हु हैज़ क्रिएटेड दिस? जस्ट गिव ए थॉट। अणु से लेकर के परमाणु तक सभी ब्रह्मांडीय क्रियाकलापों का संचालन करने के लिए नियामक सिद्धांत हैं। ऊर्जा, प्रकाश, गुरुत्वाकर्षण, सबके अपने अपने नियम हैं। ऊर्जा का नियम क्या है? जिन्होंने फिजिक्स पढ़ा होगा दे विल बी नोइंग इट। हाँ, व्हाट इज़ द लॉ ऑफ लाइट? लाइट ट्रेवल्स इन टू वन डायरेक्शन, इट गोज इन टू अ स्ट्रेट लाइन, इट डजेंट बेंड, राइट? है ना, लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स एंड ऑलवेज गोज इन टू वन डायरेक्शन, इट नेवर रिटर्न्स बैक। ऐसा नहीं है कि यहाँ से गया और यू टर्न लेके वापस आ गया। यू टर्न लेने के लिए उसको वहाँ पे एक रिफ्लेक्टर चाहिए, यू अंडरस्टैंड? तो लाइट हमेशा एक डायरेक्शन में जाता है, लाइट प्रकाशित करता है, इट डजंट क्रिएट डार्कनेस, है ना। उसी तरह से गुरुत्वाकर्षण का नियम है, कोई भी चीज़ आकाश में फेंको, आइंस्टीन को कैसे पता चला? कोई भी चीज़ आकाश में फेंकता है तो नीचे क्या गिरता है? क्यों नीचे आता है? आकाश में ऊपर क्यों नहीं चला जाता है? उसने ये डेवलप किया, उसने ये सोचा, सोच करके बताया कि यहाँ पे क्या है? गुरुत्वाकर्षण है, देर इज़ ए आकर्षक शक्ति इन टू दिस प्लैनेट जो खींच करके उसको बाहर लाती है। लेकिन जब हम इसमें पहुँचते हैं, स्पेस में पहुँचते हैं, जहाँ पे दो प्लैनेट के शक्तियाँ आकर के मिलती हैं, वहाँ पे ना ये खींच पाता ना वो खींच पाता है, तो हम बिना किसी प्लेटफॉर्म के वी कैन मूव देयर। और इसीलिए जब आप सैटेलाइट छोड़ते हैं तो सैटेलाइट जाकर के कहाँ घूमता रहता है? वो उस ऑर्बिट में जाकर के घूमता है जहाँ पे वो दोनों का, जैसे दो मैग्नेट है और दो मैग्नेट को एक साथ में लाने की कोशिश करो तो दोनों मैग्नेट का अपना अपना गुरुत्वाकर्षण का क्षेत्र होता है। जब वो दोनों क्षेत्र टकराएंगे तो दोनों क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। तो जब जहाँ पे रिपेल हो रहा है तो न तो वो खींच पाता है न तो ये खींच पाता है, तो वहाँ पे वस्तु जो है दोनों की तरफ आकर्षित नहीं होती है। लेकिन थोड़ा सा डिफ्लेक्शन या तो इस तरफ या उस तरफ तो उसको फट करके खींच लेगी। तो आपका प्लेन कैसे उड़ता है ये सब कुछ जो है इसी टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंड है। हु हैज़ क्रिएटेड दैट ओरिजिनल टेक्नोलॉजी? आइंस्टीन ने तो उसको खोज लिया, गुरुत्वाकर्षण को, कि गुरुत्वाकर्षण है इसलिए है। लेकिन गुरुत्वाकर्षण को आइंस्टीन ने बनाया क्या? He just revealed it. It is there. Who created it? That is a question. भौतिक, रासायनिक, गणित, उष्मा गति की, इसको बोलते हैं एनर्जी क्या उष्मा गतिकी को बोलते हैं डायनामिक्स, क्या बोलते हैं एनर्जी का डायनामिक्स जो होता है ना उसको उष्मा गतिकी बोलते हैं, इत्यादि सबके निश्चित नियम हैं। अंतरिक्ष में जो वायुयान चलता रहता है उसके लिए देखो कंट्रोल करने के लिए कंट्रोल रूम में कितने लोग होते हैं, हाँ, एक महत्वपूर्ण मानदंडों पर 24 घंटे निगरानी या निरीक्षण करना पड़ता है। महत्वपूर्ण मानदंड क्या है उसके, ये सारी चीज़ें कंट्रोल रूम में उसके पृथ्वी के अंतरिक्ष विकिरण कितना हो रहा है, मतलब स्पेस में कितना रेडिएशन हो रहा है, पृथ्वी अंतरिक्षयान से उसकी दूरी कितनी है और गति क्या है, किस स्पीड में चल रहा है, पूर्व स्थिति में झुका हुआ है कि नहीं है, चक्कर या घुमाव कितना किलोमीटर पर स्पीड में जा रहा है, कितना सेकंड में कितना चक्कर लेता है, वो यान पथ पर सुधार, अगर यान पथ में कुछ प्रॉब्लम आ जाता है तो उसमें सुधार कैसे किया जाए, ऊर्जा का अपव्यय कितना हो रहा है, कितना एनर्जी जा रहा है, ये सब जो चीज़ें हैं कंटिन्यूस मॉनिटर करना पड़ता है। अगर इसमें से एक भी फेलियर हो गया तो वो वायुयान जो है वो नीचे गिर जाएगा। तो इतना बड़ा बड़ा प्लैनेट जो फ्लोट हो रहा है ये आकाश में, उसको नियंत्रण करने वाला कोई नहीं है, वो बाय चांस आ गया एक ब्लास्ट होने के बाद। जैसे कि ये डॉक्टर डिस्मोडस हु इज द प्रोपाउंडर ऑफ दिस थ्योरी ऑफ बिग बैंग, है ना, एंड प्रोफेसर सुनो दे हैव प्रोपाउंडेड दैट लाइफ कम्स फ्रॉम केमिकल, लेकिन दे वर नॉट एबल टू प्रूव दैट ऑन द कोर्ट। जब उनको प्रूव करने के लिए पूछा गया, हमारे प्रभुपाद के एक डिसाइपल थे भक्ति स्वरूप दामोदर महाराज, ही वॉज अ साइंटिस्ट, ही वॉज अ केमिकल साइंटिस्ट, डॉक्टर टी डी सिंह, एंड ही वॉज होल्डिंग ए कॉन्फ्रेंस ऑफ ऑल रिलीजन ऑफ ऑल साइंटिस्ट, और उस साइंटिस्ट के कॉन्फ्रेंस में ही ओपनली चैलेंज फ्रॉम द डायस दैट ऑल द साइंटिस्ट सिटिंग हियर, कैन एनी वन ऑफ यू कैन क्रिएट एनी लाइफ, I will sponsor everything for you. Whatever chemical you want, I will sponsor. But you have to come on this days and in your laboratory, you just create even one egg. One cell. Egg is one cell, you know. One living cell is one egg. If you have that knowledge and capacity, just create one cell. And nobody could come forward. Big, big scientists, they could not come forward. Why? Because they know whatever they are trying to say, that is all speculation, and that they are actually trying to fool the people. They cannot do because this is the job of God. Bhagwan ka job hai. To isiliye humko isko samajhna chahiye. DNA ka molecule, dekho usme baat kar rahe the na, usme DNA molecule ke bare mein bata rahe the ki hum log DNA ko, usne pucha DNA se tum code kar code ko phodne ki koshish kar rahe, but who created that code for the DNA? डीएनए की रचना किसने किया? आपको मालूम है आपका जो डीएनए होता है उसके ऊपर आपकी पूरा लाइफ जो है वो डिपेंड होता है। आप ल्यूनेटिक बनेंगे, अच्छे बनेंगे, चालाक बनेंगे, मूर्ख बनेंगे, नाटे बनेंगे, खोटे बनेंगे, क्या बनेंगे वो आपका वो जेनेटिक इंजीनियरिंग डिसाइड करता है। सो इतना वेरिएशंस किसने क्रिएट किया? हु कैन डू दैट? माँ बाप जो बच्चा पैदा करते क्या उनके अंदर ये कंट्रोल है कि दे कैन डू दैट? दे कैन चेंज द डीएनए स्ट्रक्चर्स, दे कैन चेंज द जेनेटिक स्ट्रक्चर? अगर किसी माँ बाप के अंदर इतनी शक्ति होती तो किसी का बच्चा जो है लूला लंगड़ा पैदा होता है? कांट दे चेंज दैट? बट दे कैनॉट। वॉट एवर इज गिफ्टेड बाई गॉड देट ओनली दे कैन एक्सेप्ट, बट दे कैनॉट चेंज इट। उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। सो अद्भुत व्यवस्था, क्रमानुसार प्रबंध और तालमेल, ये सब किसकी रचना है? ये भगवान की रचना है। कौन नियंत्रण कर रहा है इन सबका? हमारे इस भूमंडल पर देखो कितनी सारी चीज़ें हैं। जीविकोपार्जन के लिए आवश्यक सभी साधन उपलब्ध हैं। पानी हमेशा अधिकतम 4 डिग्री पर रहता है, जिससे नदियाँ जल का स्तर, नदियों में जल का स्तर बना रहता है। कम घनत्व के कारण बर्फ पानी में तैरता रहता है। सर्दियों में पानी आवश्यक उष्मा छोड़ती है, जिससे नदी गर्म रहती है। और समुद्र और तालाब के नीचे जो जीव हैं वो सर्दियों में मर नहीं जाते हैं, नहीं तो अगर वो बर्फ में जम जाएंगे तो मर जाएंगे। थल जीवों के लिए प्रचुर मात्रा में सूखा और उर्वरक जमीन है। वनस्पति के लिए आवश्यक खनिज और जल की मिट्टी में उपलब्धि है। संस्कृति के विकास के लिए धरती के सतह पर अनेक प्रकार के खनिज और धातुओं की उपलब्धि है। हम सोना पहनते हैं, ये पहनते हैं, वो पहनते, कहाँ से आता है? किसने क्रिएट किए? हम सब कुछ भगवान से लेते हैं। तो ये जस्ट विचार करने की चीज़ें हैं, ये सब कहाँ से आती हैं? भयंकर शक्ति है इस जगत में। शक्ति का अर्थ है कि शक्तिमान का होना। एक सूर्य एक सेकंड में जितनी ऊर्जा निकालता है उतने में एक किलो वाट का इलेक्ट्रिक स्टोव 10,000,000 वर्ष तक जलता रहेगा। सूरज से एक सेकंड में जितनी ऊर्जा निकलती है, डू यू नो दिस डेटा? साइंटिस्ट ओनली हैव प्रूव दिस डेटा। हाँ, आपका एक किलो वाट का इलेक्ट्रिक स्टोव 10,000,000 वर्षों तक चलता रहेगा, एक सेकंड में जो ऊर्जा निकालता है वो। अब तक के मानवता के इतिहास में हमने इतनी ऊर्जा का उपयोग नहीं कर पाए हैं जितनी ऊर्जा सूर्य के विकिरण से एक सेकंड में निकलती है। तो ये इतनी ऊर्जा की सप्लाई कौन कर रहा है? अद्भुत व्यवस्था देखिए, मकड़ी की शिल्पकारी। मकड़ी को बुद्धि किसने दिया? हम लोग मकड़ी के जैसा जाल बना पाएंगे? उसके जाल जो है कितना ताकतवर होता है, उसके तंतु में बहुत शक्ति होती है। उसको डिपेंड करके हमारे साइंटिस्ट लोग जो है, अमेरिकन साइंटिस्ट नासा के ये प्रकृति का अवलोकन करके, उसको स्टडी करके और बहुत सारे चीज़ों को क्रिएट कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं इसके बारे में। प्रकृति में कलाकृति है, मधुमक्खियों का सामाजिक संगठन है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। एक छोटे से बीज में कितना बड़ा विशाल बरगद का पेड़ बना रहता है ना। उत्कृष्ट कलाकृति एक बुद्धिमान कलाकार की ओर इशारा करती है। आँखों की रचना देखिए, क्या आप जानते हैं आपके आँखों में 4 करोड़ नसें होती हैं? आँख कितनी छोटी है? 4 करोड़ नसें हैं। फोकस करने वाली मांसपेशियाँ दिन में कम से कम 1,00,000 बार घूमती हैं, जब हम खाली यहाँ वहाँ देखते हैं तो। रेटिना में फोटो सेंसिटिव सेल्स हैं, कितने हैं? 1,00,000, 10,000,00,000, 10,00,000 करोड़, 10 करोड़, 13 करोड़ 70 लाख फोटो सेंसिटिव सेल्स हैं, जिससे कि जो लाइट आता है उसको हम डिफाइन कर सकते कि कलर क्या है लाइट का। मानव मस्तिष्क कहते हैं ये दुनिया का सबसे शक्तिशाली और आधुनिक कंप्यूटर है। 1,17,000 विचारों को प्रोसेस करने की इसके अंदर शक्ति है। पर कलयुग में हमारा माइंड दूषित हमने कर लिया है, इसके लिए हम 2-4 चीज़ें भी साथ में नहीं कर पाते हैं, है ना। पर हमारे माइंड में इतनी शक्ति है कि 1,17,000 थॉट्स को प्रोसेस कर सकता है। मानव मस्तिष्क विश्व का सभी ग्रंथालयों में उपलब्ध सूचनाओं में से भी अधिक सूचनाएं स्टोर कर सकता है। ये डॉक्टर रिचर्ड रेस्टाक MD द ब्रेन के लेखक, द ब्रेन नाम की एक पुस्तक है उसके लेखक हैं, MD हैं, ही हैज सेड दिस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये कंप्यूटर में लोग स्टडी करते हैं, मानव मस्तिष्क अरबों कोशिकाओं से बना है और उनमें से हर कोशिकाएं इस पृथ्वी पर उपलब्ध सबसे आधुनिक कंप्यूटर से भी बहुत शक्तिशाली है। स्वरूप पहचानने की क्षमता और संशोधन करने की क्षमता है भगवान ने जो हमको बनाया है। मशीन में भी वो होती है, लेकिन मशीन को जैसा प्रोग्राम करो वैसा ही करेगा, लेकिन मानव मस्तिष्क उसको संशोधन कर सकता है, उसको रेक्टिफाई कर सकता है। जैसे इसमें A B A N G शब्द जो है वो नहीं है, लेकिन आप क्या पढ़ते हैं इसको? आपको मालूम है ये बैंगलोर लिखा हुआ है, पर इसमें जी नहीं है। लेकिन अगर मशीन को बोलो पढ़ने के लिए तो क्या करेगा? क्या पढ़ेगा वो मशीन? जैसा उसको प्रोग्राम किया है उस तरह से पढ़ेगा। उसी तरह से इसमें R मिसिंग है, हाँ, अगर एक्चुअली देखा जाए तो K इश्ना है, लेकिन हम क्या पढ़ते हैं? कृष्णा। हाँ, आर को अपने आप से डाल देते, क्यों? क्योंकि भगवान ने हमारे अंदर ऑटोमेटिक वो वैल्यू दिया हुआ है। लंदन लिखा हुआ है लेकिन उसमें N मिसिंग है, फिर भी हम उसको जान लेते हैं। तो स्वरूप पहचानने और संशोधन करने की क्षमता है। ये एक फोटोवोल्टिक मशीन है। ये मशीन में है, अगर आप कोई चीज़ प्रोग्राम कर दो कि मैं लाल रंग देख रहा हूँ, तो उसके सामने जो कुछ भी लाल रंग का दिखेगा वो सब क्या देखेगा? वही बोलेगा आई सी रेड लाइट। तो अगर उसके सामने सूरज को दिखा दो तो बोलेगा रेड लाइट देख रहा हूँ। लेकिन प्रेमी प्रेमिका जो ढलता हुआ सूरज देखते तो क्या बोलते हैं? आई सी रेड लाइट। क्या करते हैं? हाँ, अगर उसको एक लाल गुलाब दिखा दो ये फोटोवोल्टिक मशीन को, तो क्या बोलेगा? आई सी रेड लाइट, है ना। आई सी रेड लाइट। लेकिन आप जानते हैं कॉलेज या स्कूल में एक लाल गुलाब देने का अर्थ क्या होता है? यू नो दैट यू मस्ट हैव ऑल्सो पार्टिसिपेटेड, गिवन ऑल्सो समबडी। हाँ, उसका कुछ अलग मीनिंग होता है। सूरज को देख करके कवि लोग कितनी बड़ी बड़ी कविताएं लिख डालते हैं। हाँ, एक कवि लिखता भी है कविता, अस्ताचल पर युवती संध्या की खुली अलक घुंघराली है। हाँ, क्या लिखता है वो? सूरज जो है लाल कलर का जब डूब रहा है तो उसको ये नहीं बोल रहा है आई सी रेड लाइट, वो क्या बोलता है? ऐसा लग रहा है जैसे सूर्य के डूबने पर संध्या रूपी युवती जो है उसके अलकें जो है वो सूरज के मुख पर गिर रही है। मतलब उसके मुख पे अंधेरा आ रहा है, उसकी हल्के मतलब उसके बाल, उसके जो बाल हैं वो फैले हुए घुघराले बाल जो है उसके माथे पे आ रहे हैं, यानी दोनों आलिंगन कर रहे हैं। क्या क्या लिखते हैं लोग। तो दिस इज ये भगवान ने ये मशीन बनाया, मैन इज अ मशीन, राइट। लेकिन भगवान का इंटेलिजेंस देखो मशीन बनाने में, और मैन का इंटेलिजेंस देखो मशीन बनाने में। हम अपने चारों ओर सुंदर रचनाएं देखते हैं, अद्भुत और सुंदर प्राणी, इससे भी सुंदर प्राणी। वो पक्षी को देखा आपने कैसा दिख रहा था, हाँ कैसे डांस कर रहा था। हम में से किसी को ऐसे डांस करने की कला नहीं है। सुंदर स्थान, मनमोहक तैराक और रंग बिरंगे पक्षी, ये सब किसने बनाए। जिराफ गर्दन लंबी होती है, स्पॉन्जी टिश्यू होता है, हृदय 2 फुट लंबा होता है और 11 किलो वजनी और चेक वाल्व होते हैं। अगर आप सोचें तो आपके घर में पानी सप्लाई करने के लिए कितने बड़े पंप की ज़रूरत पड़ती है, 10 फ्लोर पे, 5 फ्लोर पे। जिराफ का गर्दन भी उसी हिसाब से लंबा होता है, उसका हार्ट 13 किलो का होता है, उसमें से वो पंप करेगा तो उसका खून जो है ऊपर जाना चाहिए, खून ऊपर तो चला गया लेकिन अगर पंपिंग रुक गया तो क्या हो जाएगा, हार्ट तो ऐसे पंप करता ना, है ना, तो एक बार संकुचित होता है और एक बार पंप करता है, पंप किया तो ऊपर गया लेकिन फिर जैसे खुलेगा तो फिर से खून नीचे आ जाएगा। तो भगवान ने ऐसी रचना बनाई कि वहाँ पर वाल्व होता है। फिर कभी कभी जिराफ जो है वो पानी पीने के लिए मुंडी नीचे करता है, उसको तो कोई ग्लास में और हाथ में पकड़ करके ऊपर से पानी पीता नहीं है, या आकाश में पाइप नहीं लगा रहता है हर जगह, वो पानी पीने के लिए। तो जब पानी पीने के लिए जाता है तो उसका हार्ट अगर यहाँ है तो पूरा हार्ट का खून उसको ढरक करके कहाँ आ जाएगा, उसको हार्ट अटैक आ जाएगा, उसका ब्रेन हेमरेज हो जाएगा, है ना। तो भगवान ने ऐसा बनाया है कि वो वाल्व जो है ये यहीं पर जहाँ हार्ट है वहीं पर उसको स्टॉप कर लेता है, पर जैसे वो मुंडी उठाता है फिर से वो खुल जाता है और पंपिंग चालू हो जाता है। ये इंटेलिजेंस है। ये सारी चीज़ें हम लोग नहीं कर सकते हैं। एक छोटी सी 3 ग्राम की चिड़िया है 1000 किलोमीटर का डिस्टेंस बिना रुके उड़ती है। 3 ग्राम की चिड़िया है। एरोडायनामिक्स वाले साइंटिस्ट लोग परेशान हैं कि भगवान ने इसको इस तरह से कैसे बनाया है, और वो हवा में एक जगह ही रुक सकती भी है। इट कैन हॉल्ट हरसेल्फ, हाँ पार्किंग कर सकती है हवा में ही, और पंख फड़फड़ाते रहेंगे। 1 सेकेंड में कितने टाइम पंख फड़फड़ाती है, 1000 माइल उड़ान भरती है, 1 सेकेंड में 75 बार पंख फड़फड़ाती है, दिन भर में 60 लाख बार पंख फड़फड़ाती है, और वजन कितना है, 3 किलो, 3 ग्राम, 3 किलो नहीं, हाँ नथिंग कैन सस्टेन लाइक दिस। पानी के बगैर 8 दिन तक रह सकता है, इसके 3 पलके में 3 पर्दे होते, जानते हैं आप इसके लिए, जिससे कि इसको डस्ट न जा पाए क्योंकि रेगिस्तान में रहता है। 130 लीटर पानी एक बार में पी लेता है, और पैर लंबे हैं फिर गद्देदार हैं जिससे बालू पे वो दौड़ता हुआ चल सकता है। अब देखिए हवाई जहाज बनाने के लिए डिज़ाइनर है, और ये पक्षी भी तो हवाई जहाज है ना, उसके लिए डिज़ाइनर नहीं है। जहाज बनाने के लिए डिज़ाइनर है, मछली बनाने के लिए डिज़ाइनर नहीं है। जस्सी, हाँ एक आर्टिफिशियल फूल बनाने के लिए डिज़ाइनर लगता है, एक नेचुरल फूल बनाने के लिए डिज़ाइनर नहीं चाहिए। सो हु इज़ दैट पर्सन, क्या वस्तुएं अपने आप प्रकट हो जाती हैं। यू कैन जस्ट सी दिस, देर आर सम क्रिएटर। अभी उस मूवी में भी दिखाया था, उसने बताया कि आइंस्टीन ने एक सोलर मॉडल क्रिएट किया था, एंड दैट मॉडल हैज़ कम बाई चांस, देर वॉज सम एक्सप्लोशन एंड दैट मॉडल हैज़ कम अप, and the prosecutor was not ready to accept it. How it is possible? This is impossible. It cannot be created. But they say that the universe has been created by chance. This is utter foolishness. And मूर्ख लोगों को और मूर्ख बनाने का ये तरीका है। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम ने इसको स्वीकार किया हुआ है। Nobody changes it. बहुत बरसों से हम डार्विन थ्योरी पढ़ते हैं, हाँ क्यों पढ़ते हैं, वो पूरा का पूरा लोगों को मति भ्रम करने के लिए, फिर भी हम पढ़ते हैं उसको। उसी तरह हम अपने चारों ओर मानव निर्मित वस्तुएं देखते हैं। किसी ने तो बनाता है ना इन सब चीज़ों को, कोई तो बनाया है ये, अगर कहो तो कोई बना रहा है कि नहीं बना रहा है। केक बिना बनाए ऐसे एक्सप्लोशन से आ गया, इस तरह से पढ़िया केक। किसी भी सुंदर रचना का मतलब है कि रचनाकार का होना, तो क्या इससे सुंदर जगत को बनाने वाला कोई बुद्धिमान रचयिता नहीं है। यू कैन जस्ट थिंक ओवर कौन है वो रचनाकार, क्या वो निराकार ज्योति है, क्या वो एक प्रखर शक्ति है, क्या कोई ऊर्जा है, क्या है प्यार है, किससे बनता है चीज़ें, रुपया पैसा धन संपत्ति या वह परात्पर व्यक्ति है जो ये सब चीज़ों को बनाता है। अमेरिका है, अमेरिका को रूल कौन करता है, डेमोक्रेट्स लोग रूल करते हैं, तो डेमोक्रेट्स का कोई लीडर नहीं है, डेमोक्रेट्स का एक नेता है, वो व्यक्ति है, पर्सन है, ओबामा। इंडिया में भी कांग्रेस का लीडर है, बीजेपी का कोई लीडर है, उसी तरह से इसको बनाने वाला इन विशालकाय ग्रहों के पीछे कोई व्यक्ति नहीं है, है हाँ, कौन है वो, हम में से कोई है हाँ, या हमारे इस कुर्ला से, बॉम्बे से, इंडिया से, अमेरिका से, पूरे प्लानेट से कोई है, हु इज़ दैट पर्सन, कोई मानो जो भूल गया है कि वो कौन है, क्या मैं भगवान हूँ क्या ये कोई कह सकता है कि मैं किसी के नियंत्रण में नहीं हूँ, मैं स्वतंत्र हूँ, मैं भगवान हूँ, मूर्ख आदमी ही कह सकता है। केवल भगवान परम स्वतंत्र हैं, परम नियंता हैं, उनसे बढ़कर के दूसरा कोई नहीं है। स्टार्टिंग में मैंने बताया था मत्ता परतर्मणा अन्य, और वो कौन है, भगवान भगवद गीता में कहते हैं, यह जानो कि हर परिस्थिति में चाहे वह सत्व गुण में हो, रजस गुण में हो या तमोगुण में हो, सब कुछ मेरी शक्ति से प्रकट हुआ है, एक प्रकार से मैं ही सब कुछ हूँ, फिर भी मैं परम नियंत्रक हूँ, मैं तीनों गुणों के अधीन नहीं हूँ, बल्कि ये तीन गुण मुझ पर आश्रित हैं। हाँ, अभी हमने जो देखा वो बिग बैंग थ्योरी, तो आई विल नॉट एक्सप्लेन दिस। आइजैक न्यूटन कहते हैं, सूर्य और ग्रहों और धूमकेतुओं का यह सुंदर तंत्र किसी शक्तिशाली या कुशाग्र बुद्धि व्यक्ति की सलाह और सत्ता पर के अधीन संचालित होता है। यह व्यक्ति न केवल परमात्मा के रूप में इस संसार की सभी वस्तुओं का शासन करता है, बल्कि सर्वलोक महेश्वर के रूप में शासन करता है। अपनी सार्वभौम सत्ता के कारण वह सर्वलोक महेश्वर के रूप में जाना जाता है। फिर इवोल्यूशन का थ्योरी, जो डार्विन का थ्योरी आपने देखा था, उसके बारे में है ये। जीवन केमिकल से उत्पन्न होता है अगर, तो क्या आप इसे सिद्ध कर सकते हैं, वही पूछा था ना, क्या आप एक मच्छर भी बना सकते हैं लेबोरेटरी में, या एक छोटा सा अंडा? साइंटिस्ट कहेंगे कि नहीं, हम पोस्ट डेटेड चेक देंगे भविष्य में, तो दिस इज कॉल्ड पोस्ट डेटेड चेक। सो धर्म का अर्थ होता है विश्वास करना भगवान पर, और विज्ञान का अर्थ होता है तर्क करना, तर्को प्रतिष्ठा श्रुतयो विभिन्ना, तर्क के आधार पर हम किसी चीज़ को प्रतिष्ठित नहीं कर सकते, विश्वास से हम भगवान को जान सकते हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन कहते हैं, धर्म के बिना विज्ञान धर्म के बिना लंगड़ा है, और धर्म विज्ञान के बिना अंधा है, इसलिए दोनों को मिलकर के काम करने की आवश्यकता है। श्रवण के द्वारा हम भगवान को जान सकते हैं, जो कि शास्त्र में बताया गया है, और शास्त्र की बात हम लोग कल फिर चर्चा करेंगे, इसलिए हम यहाँ पर इसको रोकेंगे। कार्य कारण का सिद्धांत, भगवान को देखने का क्या तरीका है, कार्य कारण का सिद्धांत, तो फ्रॉम दिस पॉइंट ऑनवर्ड वील कंटिन्यू विद द थर्ड सेशन। हाँ, क्योंकि थर्ड सेशन में ये पोर्शन जो है वो थोड़ा आने वाला है, इसलिए आपको बताते हैं। देखिए, जैसे ये है ना, तो विल डिस्कस दिस कि कैसे क्या होता है, भगवान को देखने की दृष्टि प्राप्त करना चाहिए, और जिससे दृष्टिगत से अदृष्टिगत प्रमाणित होता है। जैसे माला होता है ना, ये मणि दिख रही है लेकिन धागा नहीं दिखता है, उसी तरह से भगवान है अंदर और भगवान सबको होल्ड करते लेकिन हमको दिखाई नहीं देते हैं, उनको ज्ञान से देखा जाता है। जिस तरह से, उसी तरह से सेवा के द्वारा हम भगवान के विषय में जान सकते, भगवान को